उमर साहब, वी आर लाइव अगेन। देखे यार, छठा और सातवां मैच कंप्लीट हो गया, हम लाइव नहीं आ सके हैं। अब इसमें कुछ मेरी भी प्रॉब्लम थी, लेकिन कुछ आपकी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी हैं। मतलब मैं देखे फेल हो गया यार, व्यूअर्स को बताएं, मैं इनको कन्विंस करने पे फेल हो गया कि भाई आज जो लाइव करते हैं, ये गोली करा गया मुझे। क्या सीन था ये
यार जनाब? ऐसे बिल्कुल यार, आपको पता है कुछ कुछ वो थोड़ी ज्यादा आई हुई थी प्रायोरिटी, तो उधर जाना पड़ा। और बाकी आपका भी थैंक यू यार, कि आपका भी बल्कि थैंक यू कि मतलब आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया। और दूसरा बल्कि सॉरी बोलूंगा व्यूअर्स को भी, काफी लोगों के हमें मैसेजेस आए थे, इंस्टाग्राम पे भी आया था कि हम लोग लाइव नहीं आ रहे, लाइव नहीं आ रहे, तो सबको सॉरी है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको, ये जो सीरीज है, हम लोग इसको कंटिन्यू रखें और एनालिसिस करते रहें। और बाकी जलाल साहब मुझे बताएं कि क्या स्टोरी है सातवें मैच की।
भाई देखो, मैं तो ये सोच रहा था कि ऐसे हाइंडसाइड में अच्छा ही हुआ है हम छठे सातवें पे लाइव में नहीं आए। बात क्या करते मतलब इतना कोई गुस्सा चढ़ा हुआ था यार कि ये क्या हो गया हमारे साथ। ऐसे लग रहा था कि जैसे इंग्लैंड की टीम जो है ना, पहले पूरी सीरीज में हमारे साथ मजाक करती रही है कि छोटे बच्चों के साथ दाना नहीं डालते, कि यार चलो थोड़े से मैच जीत जाएं एंड में जनाब कर लेंगे। एंड में उन्होंने जो हमें आखिरी दो मैच में धोया, ओए होए होए होए, खतरनाक खतरनाक धोया। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने में से सातवें मैच का तो पूछा, क्या पहले हम सीरीज से स्टार्ट करें या पहले सातवें मैच से स्टार्ट करें? छठा तो मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता
यार। ऐसा करते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं सातवें मैच से, क्योंकि वो अभी हम लोग हारे हुए और अभी हमारे जज्बात थोड़े से जो है वो काफी एग्रेशन में, तो जो बात निकलेगी हमारे दिल से निकलेगी, और सातवें पे ही रहते हैं पहले, फिर उसके बाद सीरीज पे ओवरऑल आते हैं। क्या ख्याल है?
बिल्कुल ठीक है, सातवें पे आते हैं। तो सातवें सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमारी पहले बॉलिंग थी, उससे पहले मैच में हमने देखा था कि बड़ी ड्यू पड़ रही थी और सारे लोग ये कह रहे थे कि यार ड्यू का बड़ा असर है, तो अगर टॉस हम जीत जाएंगे, जिस तरह एशिया कप के फाइनल में कह रहे थे, और अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं तो फिर पाकिस्तान इजी मैच जीत जाएगा, फिर कोई इशू ही नहीं है। टॉस भी हम जीत गए, ठीक है, पहले हम बॉलिंग भी की, लेकिन क्या बॉलिंग की,
क्या बॉलिंग? बहुत ही पैथेटिक बॉलिंग, बहुत ही पैथेटिक बॉलिंग, सही है, कोई इंटेंट मुझे शो ही नहीं हुआ, सॉय हारिस राउट पे। सही, हसनैन के शुरू के ओवर सही थे, ठीक है, उसने एक दो ओवर, वही जो हम बात करते हैं कि वो शुरू के ओवर अच्छे निकालता है, लेकिन बाकी बॉलर्स बहुत ही फारिक, सही है। मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ कि अभी हम लोग वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं और ऐसे अगर वसीम जूनियर टाइप इस तरह के छक्के खाएंगे। आपने देखा होगा वसीम जूनियर जो थे, उनको यार वो उनको फुल लेंथ कराते थे, उस पर भी छक्का मारते थे, शॉर्ट पिच पे भी छक्का मारते थे, और आखिर में इतने कंफ्यूज हो गए वसीम जूनियर कि उनको समझ ही नहीं आ रही बॉल कहाँ पे करानी है। इतने मजे से छक्के मारे हैरी ब्रूक ने, डकेट ने, और अभी तो शुक्र है फिल सॉल्ट आउट हो गया था, अभी तो फिर वही बात है 230-240 ओवर होता। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो जो वही जो हारिस रऊफ है वही अच्छा रहा, और बाकी तो बिल्कुल भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। क्या ख्याल है आपका, आपके यार इसके बारे में आपका क्या तासुरात है?
तासुरात बड़े खराब हैं। देखो यार, नो डाउट हमारी बॉलिंग लाइनअप इनएक्सपीरियंस्ड है, और वो नजर भी आया कि हारिस रऊफ के अलावा जैसा आपने कहा कोई उस तरह नजर नहीं आया। लेकिन मोहम्मद वसीम, मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई उनके ऊपर, क्योंकि हम उनको एज एन एक्स फैक्टर काइंड ऑफ कंसिडर कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन अब जिस तरह की वो लाइन और लेंथ पे वो बॉल कर रहा है, मतलब आपको नजर आ रहा था कि हारिस रऊफ बैक ऑफ लेंथ बॉल कर रहे हैं, बीच में वो ओवर में तीन तीन स्लो डिलीवरियां अगर हारिस रऊफ करा रहा है, तो ऑब्वियसली पिच में कोई तो बात होगी ना कि वो स्लोअर वन ग्रिप कर रहा है या रीड नहीं हो रहा या टाइम नहीं हो पा रहा। आपको वो देखना चाहिए था और उससे कुछ सीखना चाहिए था हारिस रऊफ की बॉलिंग से, लेकिन आप वही फुल आउटसाइड ऑफ स्टंप खबे को कराते रहे हो और लेग स्टंप पे आप रखते रहे हो। उनकी बॉलिंग वैसे भी पता ही है, थोड़ा सा स्लिंगी एक्शन है, तो वो राइट बैटर की, राइट हैंड बैटर की लेग साइड की तरफ बॉल चली जाती है, तो थोड़ा सा मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। उनकी फेंटी भी डिजर्विंगली बहुत ज़्यादा लगी है, और फिर
बिल्कुल यार जलाल, यहाँ पे एक और बात बोलूंगा कि वसीम जूनियर है, इसको तो बाबर आजम एज अ वो खिला रहा है, एज अ मेन बॉलर खिला रहा है ना, एज अ थर्ड सीमर खिला रहा है, तो मेरे ख्याल में ये तो एज अ फोर्थ बनता है, मतलब आपके पास तीन मेन पेसर्स होने चाहिए
यार। बिल्कुल, हम एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में वसीम या आमिर जमाल में से एक को हम एज अ फोर्थ सीमर देख रहे थे, ठीक है, हम मुझे नहीं समझ आ रही कि बार बार बाबर आजम क्यों तीन सीमर्स के साथ जा रहा है, जब आपके पास ऑप्शन है चार सीमर्स के साथ जाने की। उस पर अब हम ये आते हैं खुशदिल शाह की सिलेक्शन के ऊपर भी कि क्या हम वहाँ पे इस मैच में आमिर जमाल को एक आखिरी चांस दे सकते थे, क्या पता आपको उसकी बैटिंग देखने को मिल जाती और वो बैटिंग में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे देता और फिर आप उसको वर्ल्ड कप में यूज कर सकते। अब आप किस बेसिस पे मतलब उसको जज करोगे, समझ ही नहीं आई। एक ओवर की बेस पे आप उसको जज करोगे और वर्ल्ड कप लेके जाओगे अगर लेके जाओगे तो, मतलब कोई उसका प्लानिंग समझ नहीं आई। फिर उमेर साहब फील्डिंग के बारे में आप जरा अपने कुछ तासरात जरा बताएं, मैं जरा फिर कमेंट्स भी देखूंगा, दो तीन कमेंट्स आए हैं।
हाँ हाँ, फील्डिंग यार वही बात है कि पाकिस्तान कंफ्यूज था। बाबर आजम ने कैचेस छोड़े, एक तो बहुत आसान कैच था, एक कैच थोड़ा मुश्किल था, लेकिन एक कैच जो ऊंचा था वो तो आसान था, वो तो उसके हाथ पे भी सही आ गया था। फिर उसके बाद वसीम जूनियर ने भी कैच छोड़ा, वो भी इतना मुश्किल कैच नहीं था क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है, आप गेम खेलते आए हो तो हाइट वाली बॉल तो इनको पकड़ लेनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो फील्डिंग है वो इतनी अच्छी नहीं, हारिस राउफ की बहुत अच्छी फील्डिंग है। हारिस राउफ का पता चल रहा था कि यार ये बंदा गेम में जान डाल रहा है। आपको याद होगा जो फ्रंट फुट पे शॉट मारी थी, फिल सॉल्ट ने मारी थी आई थिंक शुरू के ओवर्स में, तो वो उसने जिस तरह रोकी थी वो प्रॉपर फील हो रहा था यार कि ये बंदा इंटेंट शो कर रहा है, मतलब कि सही मोटिवेटेड है। तो बाकियों की तो फील्डिंग बस नॉर्मल ही है। आपकी कैसे?
बिल्कुल सही सही आप कह रहे हो कि हारिस रऊफ की बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव रहती है और वो मुझे तो इस पूरे मैच में बॉडी लैंग्वेज बाकी प्लेयर्स की कुछ अजीब सी लगी। कैसर अहमद साहब कह रहे हैं चेंज होगा स्क्वाड में, क्या भाई बोलो सच बोलना। यार देखो भाई अब हम क्या सच बोल सकते हैं, हमें उस तरीके से तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या वाकई चेंज होगी या नहीं होगी। खबरें जो फ्लोट कर रही हैं इधर उधर से जो सोर्सेज से पता लगता है उस हिसाब से ज़्यादा चेंजेस तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, ठीक है जो असल बात है। और अब कोई देखो कोई वो मुंह भी नहीं रह गया कि ये यू टर्न मारे, इतना इन्होंने बैक कर दिया है और इतना वो आगे से कह चुके हैं कि हमें यही स्क्वाड इसको हम बैक करें, इसको बैक करें। अगर अब चेंज करते हैं तब भी गंदे होते हैं, नहीं चेंज करते तब भी गंदे होते हैं, तो अब हम अनफॉर्चुनेटली उस सिचुएशन में आ गए। क्या कहते हो उमेर?
यार बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल में बाबर को काफी ज्यादा ट्रस्ट है अपने जो इनके जो 15 प्लेयर्स का स्क्वाड है, तो मैं नहीं देख रहा कोई चेंज होगी। हो सकता है शायद बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया सिलेक्शन की वो कि मो वसीम की तरफ से या मैनेजमेंट या मीडिया की तरफ से, तो फिर शायद हो सकता है चेंज एक बंदा वो भी, तो उसके अलावा तो कोई चेंज नहीं है यार।
बस 22 करोड़ लोगों का इन 15 के स्क्वाड के ऊपर वो ट्रस्ट बन नहीं रहा, चाह रहे हैं कि ट्रस्ट बन जाए चाह रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि नहीं चाह रहे लेकिन बन नहीं पा रहा भाई क्या करें।
बिल्कुल सही बात है यार, बड़ा एक अजीब सीन है। ये हो सकता है कि जो रिजर्व प्लेयर में वो शायद आपके पास आ जाए, जैसा फखर जमान है उसके बारे में काफी बातें हो रही हैं कि वो प्लेइंग 11 में आ सकता है। और फिर मोहम्मद हारिस की जैसा लास्ट टाइम भी हमने एपिसोड पे बात की थी कि उसको ले आएंगे 15 प्लेयर्स के स्क्वाड में, कुछ इस तरह हो सकता है।
लेकिन अब हारिस को भी एक ही मौका मिला। नेता साहब कहते हैं कि बाबर और रिजवान गॉट आउट, इट लुक लाइक पाकिस्तान डिडंट वांट टू गो फॉर विन। यार एग्जैक्टली इस पे हम आते हैं अभी बैटिंग के ऊपर। बिल्कुल देखो बॉलिंग में भी वही बात है कि आपकी इंटेंट नजर नहीं आ रही थी, अपार्ट फ्रॉम हारिस रऊफ और हसनैन की थोड़ी सी बॉलिंग आपको लग रही थी, शादाब को फेंटी लगनी शुरू हुई है, डकेट भाई ने मतलब नहीं चांस दिया एज यूजुअल जिस तरह वो आ रहा है स्पिनर्स को, तो वो बिल्कुल मौका नहीं देता। अच्छा अब इस पर थोड़ी सी ये बात भी कर लेते हैं कि वसीम को मार पड़ रही थी, नवाज आपको नजर आ रहा था वसीम पहले दो ओवरों में, नवाज के तीन ओवर फिर मिस हो गए, क्या कहते हो इसके ऊपर?
बिल्कुल यार बिल्कुल वही बात है, बाबर की कैप्टेंसी थोड़ी सी यहाँ पे मेरे ख्याल में खराब हो गई। वही इन्होंने जो फाइनल में किया था एशिया कप के, उसी तरह इन्होंने किया, नवाज से एक ओवर करवाया। और मेरे ख्याल में यहाँ पे मुझे लगता है बाबर आजम थोड़ा सा प्रेशर में आ गए थे, क्योंकि जिस तरह स्टार्ट लिया था इंग्लैंड ने खासतौर पर स्पिनर के अगेंस्ट पहले ओवर में, तो उसके बाद से मेरे ख्याल में थोड़ा सा डाउनर आ गया होगा बाबर आजम को, थोड़ा सा पैनिक कर गए होंगे, इस वजह से वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे होंगे नवाज के साथ। लेकिन ये डिसीजन अच्छा नहीं था, नवाज को इनको ओवर देना चाहिए था लास्ट।
अच्छा ये हम पैटर्न देख रहे हैं कि जब भी खब्बा बैटर आगे लगे होते हैं बाबर नवाज की तरफ नहीं जाता, जो मर्जी हो जाए बाबर नवाज की तरफ नहीं जा रहा, तो ये एक हमेशा कब से भी देख रहे हैं। अच्छा ये हमारे दोस्त जिशान साहब पूछ रहे हैं उमेर साहब कि वी वन द टॉस, व्हाई डिडंट वी ऑप्ट टू बैट फर्स्ट, वी हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड व्हाइल चेजिंग इन अ हाई प्रेशर मैच, तो इसके बारे में क्या कहते हो आप?
हेलो ये आवाज आ रही
है? हाँ मुझे तो आ रही है, आपको आ रही है मेरी?
जी 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 आ रही है। हाँ जी अच्छा जिशान साहब क्या पूछ रहे हैं?
जिशान साहब पूछ रहे हैं कि हम हर हाई प्रेशर मैच में हम स्ट्रगल करते हैं चेस करते हुए, तो हमने पहले टॉस जीतकर बैटिंग क्यों नहीं की?
यार आप बताएं जलाल साहब क्यों नहीं की इन्होंने बैटिंग?
यार जिशान साहब वही जिस तरह हमने पहले बात की कि ड्यू बहुत ज्यादा पड़ रही थी छठे मैच में, तो खास तौर पे सातवें में आई डोंट नो इतनी ज्यादा पड़ी है कि नहीं पड़ी, लेकिन छठे में बहुत ज्यादा पड़ी है, तो इस वजह से वो यही कह रहे थे कि बैटिंग लास्ट जो है ना वो इजी हो जाएगी ड्यू में, क्योंकि बॉलर से बॉल उस तरीके से ग्रिप नहीं होगी, खासतौर पे स्पिनर से। लेकिन हमने जिस तरीके से रन्स पहले करवा दिए तो उसके बाद बाबर रिजवान की विकेट गई तो फिर कुछ रह नहीं गया था। मेरा ख्याल है टॉस पे डिसीजन ठीक था, अगर आप ड्यू को इन माइंड रखो उस हिसाब से ठीक था।
यार वही बात है कि मेरे ख्याल में स्कोर थोड़ा रुक जाता, पाकिस्तान गेम में आ जाता अगर कैचेस पकड़ लेते, क्योंकि आपने देखा था कि 100 के 101 स्कोर था कि जब वो कैच छुटा तो उसके बाद भी फिर छुटे, अगर कैचेस पकड़ लेते तो शायद थोड़ी सी गेम पाकिस्तान के हक में आ जाती, थोड़ा चांस हो जाता। और बस यही
कैसर भाई बोल रहे हैं शोएब मलिक को शामिल करेंगे क्या स्क्वाड में?
कैसर भाई हमारी ख्वाहिश तो बहुत है शोएब मलिक आ जाए, लेकिन वही बात है कि जो पीसीबी सोचती है जिस तरह मुश्किल ही लग रहा है, और ऊपर से जो शोएब मलिक ने ट्वीट कर दी थी एक दफा पहले, तो मेरे ख्याल में ये सब फैक्टर्स हैं जो कि उनको नहीं आने दे रहे टीम में, लेकिन हमारी ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि शोएब मलिक आ जाए थोड़ा स्टेबल कर दें।
अच्छा कैसर साहब ना सिर्फ शोएब मलिक का पूछ रहे हैं बल्कि वो शर्जील खान का भी पूछ रहे हैं, वो इमाद वसीम का भी पूछ रहे हैं। यार देखो ये पूरा पाकिस्तान ही पूछ रहा है आज, मेरा ख्याल है क्या टाइम हो गया उमर पाकिस्तान में, हाँ ये 10 बजे के बाद जो है ना मेरा ख्याल है एक इंटरव्यू आना है जियो सुपर के ऊपर मोहम्मद वसीम साहब का, ठीक है वो हमारी वीडियो जब ख़त्म होना तो उसके बाद वो भी देखें, वैसे ना देखें मतलब वो वीडियो में शायद वो पता लग जाए आपको बात कि ये प्लेस का चांस नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी तक जो सोर्सेज बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि न्यूजीलैंड में टीम चली गई है हमारी, ठीक है जिस रात सातवां मैच खत्म हुआ है हमारी टीम फ्लाई कर गई न्यूजीलैंड में, वही स्क्वाड ऑलमोस्ट आई थिंक आमिर जमाल वगैरह शायद नहीं है, अबरार और आमिर जमाल, उसके अलावा सारा स्क्वाड वही है। तो अब क्या वर्ल्ड कप से 2-4 दिन पहले टीम में यार
मुझे तो लग रहा था जलाल जिस तरह इन्होंने मैच खेला है ना शान मसूद ने और खुशदिल ने इवन इफ्तिखार ने, मुझे तो लग रहा था ये तो फॉर द सेक ऑफ इसीलिए खेल रहे ताकि न्यूजीलैंड चले जाए, जिस तरह के यार बस स्कोर कर ले थोड़ा ताकि थोड़ा सा मतलब ना प्रेशर कम पड़े हम पे और हम आराम से चले जाए।
चलो अब आप बैटिंग पे ले ही आए हो तो बैटिंग पे ही थोड़ा सा बात रोशनी डाल लेते हैं। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि वो चीज असाइड जो खुशदिल के साथ हुआ क्राउड में, पहले भी हमने देखा पर्ची पर्ची के नारे लगे, इस मैच में भी वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इमामुल हक के टाइम पे भी हमने देखा था लेकिन इमाम ने सबका मुंह बंद किया अपनी परफॉर्मेंस से, खुशदिल के पास भी ये चांस है था कि वो परफॉर्मेंस से पर्ची पर्ची के वो बंद करता और होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब अनफॉर्चुनेट रियलिटी है पाकिस्तान में, लोगों के अपना मुंह है और आप सबका मुंह बंद नहीं करा सकते, ठीक है एक ही तरीका है मुंह बंद कराने का, आप चाहे जितना मर्जी ट्विटर पे बोलो हम यूट्यूब पे बोलें, लोगों ने अपनी राय देनी है अच्छी लगे या बुरी लगे, एक ही जरिया है परफॉर्मेंस, वो खुशदिल नहीं दे पा रहे। क्या इनिंग्स खेली खुशदिल ने, जरा थोड़ी सी रोशनी डालें ना मेरे भाई।
यार उन्होंने बड़ी फजूल इनिंग खेली है, इन्होंने 21-22 रन था उसके बाद 25 उन्होंने बॉलें खेल ली थी, और जिस बॉल पे वो आउट हुए वो तो बनता ही नहीं था बिल्कुल, वैसी वाइड बॉल जा रही है आप वाली बॉल को टच क्यों कर रहे हैं,
और रिव्यू भी ले लिया,
प्रेशर भी लिया होगा,
रिव्यू भी
ले लिया, रिव्यू भी जाया कर दिया,
लेवल हो गया
मेरे ख्याल में, वो शायद थोड़ा प्रेशर भी लिया होगा क्योंकि आपको याद होगा पूरा क्राउड पर्ची पर्ची बोल रहा है तो वो वाला थोड़ा प्रेशर होगा, लेकिन यहीं पे फिर स्पिरिट का पता चलता है और आपके जो आपकी जो वेन्स होती हैं नर्व्स जो होती हैं उसके बारे में पता चलता है।
नहीं देखो
तो वही बात है कि अगर परफॉर्म करें ये वाली बात पे तो शक नहीं है कि जिस तरह उनकी इंक्लूजन हुई है वो तो परफॉर्मेंस बेस्ड हुई है, नेशनल T20 में भी खेल के आए हैं, PSL में भी खेल के आए हैं, अब यहाँ पे नहीं खेल रहे, अब यहाँ पे इनको खेलना चाहिए ताकि जो पर्ची वाला टैग उनको लग गया जो कि पहले इमामुल हक को लगा था वो फिर इसी तरह रिमूव होगा, और उसको बड़ा सपोर्ट भी किया इमामुल हक ने, मैं एक ट्वीट देख रहा था इमामुल हक की कि इस तरह नहीं करना चाहिए बहुत बुरा लगता है और ये वो,
तो नहीं सबने सपोर्ट किया है, मतलब ये तो अनकॉल्ड फॉर है, इसमें तो हम बिल्कुल कहते हैं कि भाई इस तरह तो कोई बात नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में भी, लेकिन ये भी खुश दिल को सोचना चाहिए कि भाई जिस तरह की आप बैटिंग कर रहे हो वो बाकी कौम के भी तो जज्बात है ना, हालात हैं, ठीक है, उनको आप क्यों अप एंड डाउन कर रहे हो यार। दो विकटें गिरती हैं, जिस तरह अभी इन्होंने ये सवाल कमेंट किया था, ऊपर किसी का कमेंट था कि हाँ नेता साहब का, कि ये मैं दोबारा शो करता हूँ, बड़ी प्यारी बात की थी इन्होंने, इन्होंने कहा था कि जी आफ्टर बाबर एंड रिजवान गॉट आउट इट लुक लाइक पाकिस्तान डिडंट वांट टू गो फॉर विन। यही बात है,
बिल्कुल
साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच हो रहा है, हम भी 5-2 थे आई थिंक, और वो भी आई थिंक 5-2 थे। उधर आप उनकी इंटेंट देखो, डेविड मिलर की और क्विंटन डिकॉक की जो आगे बाद में आए हैं, और हमारे शान मसूद और खुशदिल शाह की इंटेंट देखो, मतलब बहुत समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई आप कर क्या रहे हो यार, या हार जो 100 पे ऑल आउट हो जो, लेकिन कोशिश तो करो ना, वो कोशिश ही नहीं नजर आ रही थी। क्या कहते हो इसके ऊपर आप?
यार बिल्कुल सही बात है, देखिए ना वही बात है जो मतलब जो इनका स्टाइल है, जो इनका टेम्पलेट है, ये लोग एकदम टटल हो जाते हैं जब आपका बाबर और रिजवान आउट होता है, उसके बाद इनको समझ नहीं आती कि यार ये किस तरह इनिंग को बिल्ड करें। और वही हमने देखा कि इवन यार जो चाचू जो है इफ्तिखार अहमद है, इफ्तिखार अहमद भी काफी स्ट्रगल कर रहे थे, वो भी आराम से खेल रहे, तो बड़ा अजीब लग रहा था, मजा नहीं आ रहा था बिल्कुल देखने का।
चाचू को तो चांस भी मिल गया था, हार मान ले, चाचू का कैच भी ड्रॉप हुआ,
चांस में इन्होंने सिंगल भी नहीं लिया, उसपे सिंगल भी नहीं लिया,
सिंगल भी नहीं लिया। और चाचू ने एक शॉट तो बड़ी कोई क्लासी मारी, बैक फुट जो ड्राइव मारी ना उसके ऊपर कवर के, वो तो बहुत क्लासी शॉट मारी। अब यही मसला ना, इनके पास शॉटें हैं, ये समझ नहीं आ रही, मुझे तो लगता है माइंडसेट का ही मसला है। वो जो मिसबाह उल हक को जिस तरह हम सारे कहते थे ना कि वो टुक टुक मेंटेलिटी आ गई, जैसे आपने टेम्पलेट की बात की है, अब यार 200 से ऊपर का टारगेट है, सही है, अब आपका भाड़ में जाए टेम्पलेट, यार जो भी टेम्पलेट था, टेम्पलेट आपका टारगेट देख के सेट होना चेंज होना चाहिए ना। जिससे हमने इंग्लैंड को पहले कुछ मैचेस में क्रिटिसाइज किया कि यार अगर आप 140 चेस कर रहे हो तो जरूरी नहीं है 140 को आप उस तरह ट्रीट करो कि 200 से ऊपर का टारगेट है, हम मारेंगे ऑल आउट, ठीक है। उधर उनको भुगतना पड़ा जब उन्होंने गलत कैलकुलेशन के साथ अपनी ऑल आउट अटैक पे गए, फिर छठे और सातवें मैच में बिल्कुल हम ही गलत हो गए, मतलब वो तो लग रहा था इंग्लैंड किसी और पिच पे बैटिंग कर रही है और हम किसी और पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। बहुत बड़ा गैप नजर आया भाई,
बहुत बड़ा गैप था। और वही बात है यार कि अभी वर्ल्ड कप खड़ा है आगे, और अब पता नहीं ये लोग इस अगर यही टीम जाती है और इसी तरह जाते हैं तो फिर आगे क्या बनेगा। मैं वो इस बात से मुझे याद आया, मैं सुन रहा था मोहम्मद यूसुफ की जो बात हो रही थी वसीम अकरम से, वसीम अकरम ने पूछा जी उनसे तो आप मुझे बताएं कि आपकी लाइनअप क्या होगी ना, तो कहते हैं कि लाइनअप का तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो बाबर है और रिजवान है और शान है ये तो कन्फर्म है आपके जो टॉप ऑर्डर जो खेलेंगे। तो मुझे उस बात से लगा कि यार ये इनका कोई माइंड सेट पे कोई चेंजिंग नहीं आ रही, कोई ये लोग सोच ही नहीं रहे आउट ऑफ द बॉक्स। रमीज राजा को भी मैंने सुना सुबह, वो भी बोल रहे हैं कि भाई कि यहाँ पे लाजमी नहीं है कि आप साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया का टेम्पलेट उठा लो, पाकिस्तान पे रेप्लीकेट कर दो, हमारी विनिंग परसेंटेज 80% है। अब तो अजीब बातें चल रही है, 80% भी पता नहीं कैसे है।
ये रमीज राजा की बात पे तो यही कर सकते हैं, अच्छा, और तो कुछ नहीं कर सकते।
ये वाली बात से मुझे याद आया, आप मुझे बताएं, आपसे सवाल में पड़ा एक अच्छा पूछने वाला हूँ, मुझे बताएं कि पाकिस्तान अभी सीरीज तो हार गया इंग्लैंड से, तो वो 4-3 हार है या 6-1 हार है?
बड़ी प्यारी बात की यार आपने, मोइन अली ने हमारी किट लगा दी इस बात के ऊपर। तो पहले उन्होंने कहा कि जी लाहौर का खाना नहीं इतना अच्छा था, फिर वो कहते हैं कि भाई ये सीरीज ऐसे था कि हमें 6-1 जीतनी चाहिए थी, क्योंकि जो हम चौथा और पांचवा मैच हारे हैं वो हम हारे हैं, ठीक है, बेसिकली वो इंग्लैंड हारा है। तो मैं वही कह रहा था कि मुझे लगता है चौथे और पांचवें मैच के बाद ना इंग्लैंड की टीम ट्रिगर होगी, क्योंकि काफी एम्बैरसिंग लॉस थी उस सिचुएशन में जाके, इंग्लैंड जीता हुआ था चौथा मैच तो बिल्कुल ही जीता हुआ था, वहां से वो हारे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम, मतलब जाहिर है उन्होंने दिल पे ले लिया। अच्छा ये विकास साहब का आपको कमेंट अगर नजर आ रहा हो तो वो पढ़ें, क्योंकि काफी
विकास साहब कह रहे हैं पाकिस्तान ये क्लब लेवल की क्रिकेट खेलता है, सिर्फ जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज से जीत सकता है, जो बड़ी टीम से बायलेटरल वी नहीं जीत सकता है, और हर नए के बाद बहाना बनाता है,
हारने के बाद बहाना बनाता है,
और हारने के बाद बहाना बनाता है।
बिल्कुल यार,
अब तो बहाना भी नहीं बना रहा यार,
अब तो आप ये कह सकते हो, लेकिन अगर रियलिटी
देखे,
हाँ बोलो बोलो आप।
मैं बता रहा था कि जैसे शादाब है ना टीम में, शादाब शादाब जो वो बातें करता है उससे लगता है कि उसको रियलाइज हो रहा है यार हमारी टीम में कुछ कमी है। बाकी आप सुन लें रमीज राजा को, सुन लें बाबर आजम को, सुन लें, वो तो कहते हैं जी नहीं ठीक चल रहा है हमारा मिडल ऑर्डर परफॉर्म किया है ना, आपको याद होगा एशिया कप में, मतलब वो उस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको अभी तो रियलाइज भी नहीं हो रही ये चीज।
देखो कुदरत का निजाम है कि हार जीत होनी है, तो फिर आप टेंशन क्यों लेते हो, क्यों टेंशन लेते हो यार, चलता है। देखो लोग विराट कोहली की एग्जांपल दे रहे थे कि विराट कोहली भी तो यही कहते हैं कि भाई गेम में विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट ऑफ गेम, बिल्कुल है यार, कोई इसे डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके कार से आप हार रहे हो लोग उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये वो टीम है, ये बड़ा रोना रोते हैं कि जी इनको बैकिंग नहीं मिलती, बैकिंग नहीं मिलती। इस टीम से ज्यादा बैकिंग मेरा नहीं ख्याल रिसेंट पास में किसी और टीम को मिली हो बैकिंग, पूरी कॉम ने इनको सपोर्ट किया। जब ये इंडिया से पहला मैच हारे एशिया कप में, किसी ने, मैंने नहीं सुना किसी ने, सेन बंदे ने, अकलमंद आदमी ने, थोड़ा सा भी जिसको अकल हो, उसने क्रिटिसाइज किया हो, उसने कहा भाई लड़के हारे, ठीक है। इस मैच में और एशिया कप के फाइनल में
जलाल जो पाकिस्तान इंडिया का मैच,
हाँ हाँ बोलो आप,
बोले बोले
अच्छा, इस मैच में जो था और एशिया कप के फाइनल में प्रॉब्लम ये थी कि भाई आपने कोशिश ही नहीं की, आपकी इंटेंट ही नहीं थी जीतने की, ठीक है, वो हर्टफुल थी व्यूअर्स के लिए, और तब वो आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है और वो जायज क्रिटिसिज्म है, आप जितना मर्जी रोना रो लो। सही कह रहे हैं विकास साहब, बहाने बना रहे हैं,
बिल्कुल बिल्कुल सही यार। अब आप देखें ना जलाल साहब, अब अभी आप देखें विनिंग रेशो अगर जो बात करते हैं 80% की, उसमें या तो आपके बॉलर्स ने जिताया है, ठीक है, आपके बॉलर्स ने जिताया है, या तो आपके ये उसके अलावा या तो बाबर ने या रिजवान ने, उसके अलावा कौन है यार मिडल ऑर्डर में जो आपका इनिंग को सही लेके चले, क्या सीन चल रहा है मिडल ऑर्डर में, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है सेकंड डाउन, इंडिया का कौन आता है, सूर्या कुमार आता है, ठीक है, वो कितना मार के गया है साउथ अफ्रीका वाले मैच में, ऑस्ट्रेलिया में कितना अच्छा खेल के गया, और हमारे सेकंड डाउन में कौन आ रहा है, इफ्तिखार आ रहा है, इफ्तिखार भी क्या खेल रहा है, 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, उसके बाद फिर मार रहा है वो। तो यार ये बड़ी अजीब चीज है, इनको ये चीज रियलाइज ही नहीं हो रही कि भाई ये सेकंड डाउन बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर स्ट्राइकर चाहिए, प्रॉपर मतलब जो अच्छा अच्छा स्लॉग कर सके, उस तरह का बंदा चाहिए।
नहीं सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। राबी साहब सलाम कह रहे हैं, राबी साहब कह रहे हैं व्हाई आसिफ अली प्ले एवरी मैच, ही इज अ रबिश बैट्समैन। यार देखो मुझे देखो, एक डॉक्टर नुमान नियाज ने भी बड़ी अच्छी ट्वीट की थी, उन्होंने आसिफ अली के बारे में भी पहले कहा था और उन्होंने खुशदिल के बारे में भी कहा था, खुशदिल पे क्रिटिसिज्म जितनी करो कम है, नो डाउट, खासतौर पर इस जो लास्ट इनिंग्स में जो उन्होंने खेली है वो तो बिल्कुल ही कोई अजीब सी, समझ ही नहीं आई किसी को कि करने क्या आए हैं 25 गेंदे खेल गए। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या आप खुशदिल और आसिफ को सही यूटिलाइज किया आपने, पूरे एक साल को अगर आप उठा के देखो कि उनको आपने सिचुएशन बेस्ड सही यूटिलाइज किया, मुझे नहीं लगता आपने सही यूटिलाइज किया। उन्होंने भी, डॉक्टर नुमान नियाज ने भी ये बात की कि खुशदिल को आपने सेलेक्ट किया था ऑलराउंडर के तौर पर, मुझे नहीं याद खुशदिल से कोई ओवर करवाया बाबर आजम ने जितनी भी T20s अभी एशिया कप से हुए हैं, मतलब कोई सीन नहीं नजर आ रहा। आसिफ भाई का भी वही मसला है कि यार जिस सिचुएशन में वो आते हैं 20-15-20 की एवरेज चाहिए होती है, वो क्या करे अकेली जान, मतलब ये मसला है। जब उमैर साहब की लगता है सीडी अड़ गई, उतनी देर में कमेंट्स ले लेते हैं उमैर साहब जब तक वापस आते हैं। अच्छा जी, इशफाक साहब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, भाई समझ नहीं आया कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस की है या इंग्लैंड को भरपूर तैयारी दी है। यार देखो बात हम इस पे आते हैं, क्या खोया क्या पाया पे, बात तो आपकी जेन्युइन है कि हमें अगर पॉजिटिव देखें तो पाकिस्तान के तो बहुत कम है और इंग्लैंड के जो हैं वो जैन पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल जेन्युइन है, बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। अच्छा विकास साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान क्योंकि शॉर्ट पिच बॉल खेल नहीं सकता एक्सेप्ट इंजमामुल हक के, वो अच्छे प्लेयर थे शॉर्ट पिच। यार इस बात में भी दम है, ये अभी आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़े अरसे की प्रॉब्लम चल रही है हमारी। आप पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट को कितना कीनली फॉलो करते हो, आई एम एज्यूमिंग कि आप इंडिया से हो, लेकिन अगर नहीं हो इंडिया से पाकिस्तान से तो वो भी बता दें। तो उसमें ये था कि न्यूजीलैंड की सीरीज़ आपको अगर याद हो, एक पाकिस्तान की हुई थी UAE में, उसमें फर्गौसन साहब खेल रहे थे और फर्गौसन ने हमारी पूरी टीम को तबाह बर्बाद कर दिया था शॉर्ट पिचे मार मार के, तो वो तो बिल्कुल आपकी बात जायज़ है और पता नहीं कब रिजॉल्व होगी, ये भी मजेदार बात है, कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे रिजॉल्व होगी कैसे नहीं होगी। गौरव चौधरी साहब क्या कहते हैं? गौरव चौधरी साहब कहते हैं भाई कि बाबर को अपनी इंटेंट चेंज करनी पड़ेगी और फ्रंट से लीड करना पड़ेगा और बाबर को अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना होगा। बिल्कुल जी। अच्छा गौरव चौधरी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है बाबर को ओपनिंग करनी चाहिए या बाबर को मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी चाहिए, वन डाउन या टू डाउन? क्या आप कहते हैं, मुझे ज़रा कॉमेंट करके बताएं ना। बाकी भी ज़रा बताएं कि आप लोग क्या समझते हैं कि बाबर की, बेस्ड ऑन, ये नहीं है कि बाबर ओपनिंग अच्छी नहीं करता, बहुत अच्छी ओपनिंग करता है, लेकिन क्या बाबर टीम की जो मिडिल ऑर्डर की स्ट्रगल्स हैं उस हिसाब से बाबर को वन डाउन बैटिंग करनी चाहिए या टू डाउन बैटिंग करनी चाहिए या ओपनिंग, ये बताएं ज़रा। अच्छा जी, इश्फाक साहब कहते हैं शदाब की गैरत को सलाम, वो समझ गया था कि शान ने 50 चाचू ने कोई इंटेंट नहीं दिखा है। यार मैं भी पहले ये समझा था कि शदाब तप में बैटिंग करने नहीं आया, लेकिन आई थिंक जो असल रीज़न थी वो थी उसको शायद हैमस्ट्रिंग इंजरी होगी और वो भी एक ख़तरनाक सिचुएशन होगी पाकिस्तान के लिए। अच्छा एक मिनट, उमैर साहब कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो आ नहीं पा रहे, तो मुझे उनको एक मैसेज इधर से करने दें, जस्ट गिव मी अ सेकंड कि वो उनको समझ आ जाए कि भाई आप आ नहीं पा रहे। उमैर साहब आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, रीट्राई करें। ठीक हो गया। अच्छा बैक टू कमेंट्स साहब आते हैं हम। अच्छा विकास साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान नीड बिग चेंजेस लाइक फखर, फखर को ओपनिंग करनी चाहिए हाँ वर्ल्ड कप में। खुशदिल का पता नहीं क्या कर रहे हैं टीम में। हाँ यार बात ठीक है आपकी, खुशदिल की तो अभी तक नहीं समझ आ रही बाकी कि टीम में क्या कर रहे हैं, और ओपनिंग वही बात है यार। देखो बाबर रिजवान स्टबन कह लो जो मर्जी कह लो, वो कहते हैं कि भाई हमने नहीं हटना ओपनिंग से, हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने इतने मैचेस जितवाए हैं, तो अब हम क्या कह सकते हैं भाई। अच्छा जी गौरव साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि बाबर को नंबर 3 पे आना चाहिए, ये भी मैंने उनसे जो सवाल किया था, ओपनर फखर को या कोई न्यू अच्छा बैटर लाना चाहिए, बाबर को एंकर रोल अदा करना चाहिए लाइक कोहली। मेरा भी ये पर्सनल ख्याल ये है, आप ठीक कह रहे हो, फखर ही ओपनर बनता है क्योंकि अभी और नया प्लेयर तो वर्ल्ड कप से पहले फौरन नहीं डाल सकते, तो ये बात तो ठीक है आपकी। अच्छा और राबी साहब क्या कह रहे हैं, राबी साहब कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल इन दिस वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पे फाइनल, इंग्लैंड विल बी चैंपियन। क्या बात है यार, क्या बात है यार। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की टीम ज़्यादा स्ट्रांग है इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड के जो मेन प्लेयर्स हैं ना वो अभी तक इंजर्ड हैं और आई डोंट नो कि वो कितना फिट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो आपने अभी इंडिया में देखी है उसमें डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस और मिचेल मार्श ये अवेलेबल नहीं थे, स्टिल आपको उनकी डेप्थ नज़र आई है। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो मुझे, मेरे ख्याल में तो ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फिर मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन आपकी ये सेमीफाइनल्स ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया साउथ अफ्रीका बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। अच्छा विकास साहब कह रहे हैं बाबर को वन डाउन करना चाहिए, टू डाउन नहीं खेलना चाहिए क्योंकि ओवर ख़त्म होंगे उसमें, हाँ उसमें आई थिंक आप कह रहे हो कि उसमें मारने की एबिलिटी नहीं है, ये बात भी ठीक है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बाबर आ नहीं ना रहा यार, कुछ करें अब इसका, बाबर नीचे आता नहीं ना, ये तो मसला है। अच्छा गौरव चौधरी साहब कहते हैं कि जी श्रीलंका और न्यूजीलैंड को हल्के में नहीं लेने का, बिल्कुल हल्के में नहीं लेने का भाई, श्रीलंका ने तो एशिया कप में शो कराया है, और श्रीलंका और न्यूजीलैंड वो दो टीमें जो हमेशा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में अच्छा अच्छा खेलती हैं, बहुत अच्छा खेलती हैं। अच्छा जी लेट्स चेक अगेन कि उमैर साहब का कोई असरात नज़र नहीं आ रहे, चलो आ जाते हैं अभी। अच्छा जी श्रीलंका और न्यूजीलैंड को हल्के में नहीं लेना, उसके बाद नेता साहब क्या कहते हैं, नेता साहब कहते हैं इंग्लैंड ऑल्सो प्लेड विदाउट स्टोक्स बटलर लिविंगस्टन, ये बात भी जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है। अच्छा अब इसमें बात ये कि नेता साहब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो ऑस्ट्रेलिया की ना आपको बॉलिंग वाइज बहुत ज्यादा ऑप्शंस नजर आ रही हैं, आप देखो हेजलवुड है, स्टार्क है, पैट कमिंस है, फिर मार्कस स्टोइनिस है, मिचेल मार्श है, पांच तो समझ लो तीन तो आउट एंड आउट पेस बॉलर हैं, दो आपके पास मीडियम पेस ऑलराउंडर्स हैं, कैमरून ग्रीन को पता नहीं वो डालते हैं नहीं डालते, अगर वो हो गया तो छः प्लेइंग इलेवन में छः हो जाएंगी ऑप्शंस। चलिए मैं साहब कॉल कर रहे हैं, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। उमेर साहब आवाज आ रही है आपको?
जी जी आवाज आ रही है, आपको आ रही है आवाज?
बिल्कुल आ रही है सर, आप तो गायब हो गए थे
यार, आपको बस अब क्या बताऊं,
मसले मसाइल हो गए,
इंटरनेट का थोड़ा इशू हो गया था इंटरनेट का थोड़ा इशू हो गया था यार, तो बस अभी रिजॉल्व किया है, शुक्र है हो गया।
चलो अल्लाह अल्लाह करके हो गया। मैं एक मिनट, वो कमेंट दो तीन रह गए हैं वो पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। इश्फाक साहब ने ना एक कमेंट ऊपर किया था जिसपे अभी हम आगे आते हैं,
अच्छा
तो उससे स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं जरा ये पढ़ लूं जरा एक और। इश्फाक अली कहते हैं बाबर एक भोला बंदा है, कैप्टनसी उसके, मेरा ख्याल है कि आप कहना ये चाह रहे हो कैप्टनसी उसके बस की बात नहीं है, इस पे भी आते हैं। ये देखो ये वर्ल्ड कप ना बाबर की कप्तानी का भी मेक और ब्रेक है, खास तौर पे T20 फॉर्मेट का, तो ये बात आपकी एक तरीके से जेन्युइन है। अच्छा
यार बिल्कुल सही बात है, और अगर ये वर्ल्ड कप पे पाकिस्तान परफॉर्म नहीं करता तो फिर आप देखना जलाल बाबर आजम भी जाएगा, सही है, आपके जो भी अपर मैनेजमेंट है सब चली जाएगी, और फिर हमें एक और चेंज नजर आएगा इसमें, क्योंकि ये लोग काफी कर रहे हैं ना बातें।
बिल्कुल ऐसे ही है, सही
बाबर, बाबर का तो यार कैप्टेंसी का तो शुरू से ही इशू चल रहा था, अगर आपको याद हो जब मतलब वो शुरू से ही थोड़ा मतलब इतना अच्छे कैप्टन नहीं साबित हुए।
यार देखो लास्ट वर्ल्ड कप में तो उसने कप्तानी तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन आप ये कह सकते हो कि टीम सिलेक्शन में वो बहुत ज्यादा स्टबर्न है, बैटिंग लाइनअप में बहुत ज्यादा स्टबर्न है, बॉलिंग में भी वो आपको नजर आता है कि वो सिचुएशन बेस कभी कभार बेस्ट डिसीजंस नहीं लेता, जैसा नवाज के ओवर्स छोड़ना सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि आगे खब्बा बैटर है तो मैं नवाज से कराऊंगा ही नहीं, हालांकि खब्बा बैटर है और अगर आप नवाज से कराते हो ठीक है छक्के के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन फिर आउट होने के चांसेस भी ज्यादा ना, क्योंकि वो उस पर चांस लेगा खब्बा बैटर, तो थोड़ा सा मसला तो है ऑब्वियसली। अच्छा ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम, गौरव साहब कहते हैं किसी दिन भी किसी टीम को भी हरा सकती है, अब ये बचपन से यार तो हम बुड्ढे हो जाएंगे यही होता रहेगा।
यही तो खासियत है पाकिस्तान की, और देखिए इसी वजह से तो वो कह रहे थे ना जो भी मैच हुआ है, जो फिफ्थ मैच हुआ था जिसपे कह रहे थे कि हार्ट अटैक आ जाएगा लोगों को काफी, आयन बिशप ने भी ट्वीट की थी इस पे कि भाई ये मैच देखना मैं टीवी बंद कर आया था, तो यही खासियत है थोड़ी पाकिस्तान की,
पता नहीं यार ऐसी खासियत नहीं नहीं मिले। अच्छा ये आपके असलम शेख साहब कह रहे हैं कि आपका भी काइंड ऑफ आप शर्जील खान की फेवर में थे, वो कह रहे हैं शर्जील कैन ओपन, यार अब ओपन का क्या,
ओपन वाला तो सीन है ही नहीं ना, ये तो असलम भाई मैं आपको बताऊं ओपन वाला तो चक्कर है ही नहीं, बाबर और रिजवान वहां से हिलेंगे नहीं पता है, और कोई सीन ही नहीं है, मतलब कोई चक्कर ही नहीं है यार। अच्छा एक और चीज, मैं बड़ा हैरान हुआ जलाल इनके इस कमेंट से मुझे याद आया, आपने वसीम और वकार की देखी है प्लेइंग 11?
हाँ हाँ देखी मैंने, बिल्कुल
वर्ल्ड कप की उसकी, उसपे उन्होंने फेसर इसी से कराया है बाबर और रिजवान से,
बिल्कुल फेसर उन्होंने इसी से करवाया है, आपकी सीडी फिर अड़ गई है, फेसर उन्होंने उसी से करवाया है, और उसकी रीजन भी यही है कि शायद उनको पता है कि बाबर और रिजवान ने जो है ना वो हटना नहीं है, बिल्कुल नहीं हटना।
सही बात, यही रीजन होगा।
अच्छा एक ये सवाल कह रहे हैं राबी साहब कि कैन शर्जील एंड आजम खान प्ले फॉर पाकिस्तान साइड फॉर वर्ल्ड कप 2022? यार अब एक मिनट रियलिस्टिकली ओके सोचो, आज क्या तारीख होगी भाई उमेर? तीन है ना,
तीन तारीख होगी,
ठीक है
हाँ तीन तारीख है,
ठीक 20 दिन बाद आपका मैच है इंडिया के साथ वर्ल्ड कप का, सही है, अब आप 20 दिनों के अंदर कितनी चेंजेस कर लोगे ये भी तो देखो ना यार, अब नहीं हो सकता मेरी जान, अब एक आध चेंज के अलावा मेरा नहीं ख्याल एक दो चेंजेस मैक्सिमम है, वो भी मुश्किल लग रही है।
बस यार ये दुआ है कि कोई इंजर्ड ना हो जाए यार, क्योंकि न्यूजीलैंड के स्क्वाड में उन्होंने देखे विलियमसन को भी बिठाया है, वो नहीं खेल रहा, ट्रेंट वॉल्ट भी नहीं खेल रहा और फर्गसन भी नहीं खेल रहा, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि यार नसीम को बिठाए, सही है, इवन रिजवान को भी बिठा दें यार, अगर वो राजी होते हैं रिजवान बैठने के लिए, तो वो भी मतलब बड़ा अच्छा डिसीजन है।
यार देख, उनके पास ना ये लग्जरी है कि उनकी थोड़ा सा ना सेटल्ड स्क्वाड है, हमारी टीम सेटल्ड नहीं है। देखो हम आखिरी मैच में भी हम सारे अपने मेन प्लेयर्स ले आए, क्योंकि हमें लग रहा था हम सीरीज हार जाएंगे, तो हम डर के मारे हमने चांस ही नहीं दिया, हमने हारिस को भी निकाल दिया, आमिर जमाल को भी निकाल दिया, तो हमारा अजीब सी मेंटेलिटी है उसको। अब बाय द वे
नसीम, मजे की बात,
नसीम अभी भी कोविड का शिकार है, शदाब को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो चुकी है, फखर आपका इंजर्ड है, शाहीन भी आपका इंजर्ड है, तो ये चार तो वैसे ही मेरा ख्याल है नहीं खेल पाएंगे।
अच्छा ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि इंग्लैंड का हमने देखा ना साथ में मार्क वुड नहीं खेला, हालांकि मार्क वुड यार अगर वो खेलता तो मेरे ख्याल में काफी और स्ट्रगल करता पाकिस्तान, क्योंकि उसकी पेस भी फिट है और पाकिस्तान का वैसे ही सिनेरियो सही नहीं जा रहा। बाकी बाकी जो लोग हमें अभी वीडियो देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ साथ हमें फीडबैक भी दें, बताएं भी कि क्या क्या चीजें बेहतर होने वाली है, एक तो इंटरनेट है उसके अलावा क्या क्या है वो बता दें।
इंटरनेट तो हमारे बस की बात नहीं लग रही है भाई, ये इंटरनेट जो है ना ये मसला मसाइल कर रहा है। अच्छा इशफाक साहब ने एक सवाल किया था, फिर मैं बाकी कमेंट पे आता हूँ, वो हमारी बेसिकली वीडियो का लुबे लुबाब वही था, उन्होंने सवाल ये पूछा था कि भाई बेसिकली क्या खोया क्या पाया पाकिस्तान ने, क्या पॉजिटिव पाकिस्तान के क्या पॉजिटिव इंग्लैंड के। तो अगर उमेर साहब आपसे मैं ये सवाल करूँ कि पॉजिटिव पहले तो बताएं पाकिस्तान के, क्योंकि मुझे लगता है को पॉजिटिव हमारे कम है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, क्या पॉजिटिव था पाकिस्तान के?
यार पाकिस्तान के अगर पॉजिटिव की बात करें इन 7 मैचों में जो मैंने देखा वो हारिस रऊफ है, मतलब कि हारिस रऊफ ने एक अपना रोल प्ले किया, सही है, उसकी इंटेंट शो हुई, उसके हमें नजर आया कि यार वो वाहिद बंदा है टीम में जो कि फील्डिंग में भी जान मार रहा है बॉलिंग में भी जान मार रहा है, तो एक ही मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है। उसके अलावा एक और पॉजिटिव ये नजर आ रहा है कि सारे प्लेयर ट्राई हो गए, कि खुशदिल की बात जो कर रहे थे कि उसको ऊपर भेजे वो वहां पे खेल जाएगा, हैदर अली के बारे में बड़ी बातें कर रहे थे हम लोग कि उसको चांस देना चाहिए, तो ये सब चीजें ट्राई हो गई हैं, ये एक पॉजिटिव चीज है। तो आप बताएं आपको क्या लगा है कुछ पॉजिटिव चीजें?
यार देखो आपने क्या पाया तो बता ही दिया, मेरा भी यही है, क्या खोया पे मैं अपने जरा रोशनी डाल देता हूँ थोड़ा सा।
क्या खोया पे डाले?
देखो जिस तरह आपने कहा ना कि पॉजिटिव ये था कि हमने प्लेयर्स को ट्राई कर लिया, तो नेगेटिव भी ये था ट्राई करने के बाद रिजल्ट कुछ नहीं मिला। जहाँ सवाल थे वहां और ज्यादा सवाल पैदा
उधर की उधर ही।
मतलब हम कह रहे थे कि फखर को हटाओ हैदर को डालो, अब हम कह रहे हैं हैदर को हटाओ फखर को डालो। मतलब क्या हो गया यार हमारे साथ। अच्छा शान को हमने डलवाया,
पीसीबी हमें नचा रहा है उंगलियों में
बिल्कुल।
अच्छा चलो उसको डाल,
देखो शान की हमने स्टैट्स गिनवा शान को डलवाया, अब शान भी वही इनिंग्स खेल रहा है, अपनी 50-50 तो हो रही है उसकी, लेकिन चलो पहली 50 अच्छी थी उसकी, उसमें इंटेंट थी, ये वाली 50 में ही शॉटे मार रहे थे, लग कुछ नहीं रही थी उनकी, ठीक है, वो क्लियरली नजर आ रहा था स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बड़ी एक अजीब सी इनिंग्स बेचारों की थी। तो अब शान पे भी क्वेश्चन मार्क तो है ऑब्वियसली, अब ये नहीं कह सकते कि आप वो फुल फ्लुएंसी से खेल रहे हैं। फिर बॉलर्स में भी आपकी एक खुल गई थोड़ी सी क्वेश्चन मजीद, कि हमें लग रहा था हमारी बॉलिंग लाइनअप जो है वो बड़ी फिट है, तो शायद हो जाए नसीम और हसनैन या शाहीन जब वापस आए, लेकिन ये वाली बॉलिंग लाइनअप में इनएक्सपीरियंस आपको नजर आ रहा है, तो
यार
वो भी खोया ही है हमने।
ये इनएक्सपीरियंस में बड़ी अच्छी बात की कि याद है पहले हम बात कर रहे थे कि शाह नवाज को ऊपर ले जाए रिजर्व प्लेयर से निकाल के, तो अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार गए क्योंकि शाह नवाज काफी एक्सपेंसिव रहे, और वही बात है कि अभी एक्सपीरियंस इतना नहीं है शायद, और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले मार पड़ा रहे।
नहीं, इस सीरीज में तो शाह नवाज की 12 से ऊपर की इकोनॉमी है, तो उससे आप अंदाजा लगा लो।
अच्छा
और हसनैन को भी मैं स्लाइड ये कह सकता हूँ कि हसनैन मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव इस तरह लगा है कि वो पैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग करा देता है, मतलब वो एक विकेट टेकर ऑप्शन आपको लगता है, ये अलग बात है कि वही बाबर की कप्तानी आ जाती है कि आप उसको एंड में ना करवाओ ना, आप उसको राइट टाइम पे यूटिलाइज कर लो, और वो तब भी हो सकता है जब आप 4 पेसर्स के साथ जाओगे, 3 पेसर्स के साथ आप ये नहीं कर सकते। तो
यार बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल में 4 पेसर्स में तो फिर आपका ऑलराउंडर आएगा ना, वसीम को ले आएंगे ये लोग, तीन तो आपके जो तीन है वो तो डन है, एक शाहीन डन है, एक आपका नसीम डन है, और एक हारिस राउफ डन है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल हसनैन बैकअप मेरे ख्याल ठीक है, क्या ख्याल है?
नहीं हसनैन तो ठीक है यार, देखो एक चीज ये है ना कि शाहीन का मुझे नहीं लगता शाहीन एकदम से फिट होगा और एकदम से इंडिया के लिए रेडी हो जाएगा, सही है? तो मुझे लगता है वो मैच हसनैन ही खेलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ खुशदिल, खुशदिल ने आपको प्रूफ कर दिया कि उधर आप मोहम्मद वसीम को खिला लो या खुशदिल को खिला लो, बात एक ही है, ठीक है? अच्छा, और एक जो सबसे बड़ा जो क्या खोया मैं ये लाऊंगा, जो हम ट्राई नहीं कर सके वो ये नहीं कर सके कि हमने लो वैल्यू विकेट्स जिनको हम कहते हैं क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में लो वैल्यू विकेट्स आ गई। लो वैल्यू विकेट्स का मतलब है कि मोहम्मद वसीम जैसा प्लेयर आप इसको ऊपर भेज देते किसी मैच में। फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट मैच पक्की एग्जाम्पल थी जहां पे आपने खुशदिल को भेजा या इवन इफ्तिखार को भेजा, वहां वसीम को भेज देते और बोलते जाओ मारो, ठीक है, आउट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है? ये काम हमने नहीं किया, शदाब के साथ हमने नहीं किया ये काम कि शदाब को हम ऊपर प्रमोट करके देखेंगे वो बैटिंग करता है, नवाज के साथ हमने ये काम नहीं किया। तो आपने वो चीज ट्राई आउट ही नहीं की पूरी सीरीज में, तो वो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया उधर से। इंग्लैंड के लिए बड़े पॉजिटिव है, उस पर जरा नजर डालो फिर कॉमेंट्स की तरफ आते हैं।
हाँ यार, इंग्लैंड का एक डकेट सबसे सबसे जो उनका गेन हुआ वो डकेट का हुआ है। मुझे याद है शुरू में बातें हो रही थी कि इसको खिलाना भी है या नहीं खिलाना, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहा, उसने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद इंग्लैंड का जो इंटेंट है, जो उनके बेसबॉल नैरेटिव है, वो भी उन्होंने यहाँ पे आखिरी दो मैचेस में काफी अच्छा शो किया कि शुरू के प्लेयर अगर आउट हो भी जाए उसके बाद उन्होंने मारना है। मतलब हैरी ब्रूक की इनिंग देखें, कमाल की इनिंग है, सही है। और स्टार्ट में फिल सॉल्ट शुरू के मैचेस में तो नहीं चला, लेकिन आखिरी मैचेस में आपके सामने उसने जिस तरह उसने वो जैसा अटैक किया, उसने नवाज को भी मारे, हसनैन को भी मारा। तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड ने तो काफी ज्यादा गेन किया, उन्होंने तो बल्कि अपनी जो रोटेशन पॉलिसी है उसको भी काफी अच्छा यूटिलाइज किया कि मार्क वुड को जिस तरह उन्होंने एक मैच खिलाया फिर बिठाया फिर खिलाया। तो इंग्लैंड की मेरे ख्याल में काफी ज्यादा उनके लिए पॉजिटिव चीज है। अब मेरे ख्याल से उन्होंने अभी उधर जाना है, सिडनी जाना है ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए,
आई थिंक
10 तारीख को। उनकी तो भाई काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी।
देखो डकेट स्क्वाड में नहीं, और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि आप शायद डकेट को वो स्क्वाड में कंसिडर कर सकते हैं, तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। फिर उनको बॉलिंग में भी उनको नजर आ गया है कि उनके पास डेप्थ है, टॉपली कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मर
कमाल का
अच्छा जा रहा है, ठीक है। अब इवन सैम करन उनके लिए एक अच्छा पॉजिटिव नजर आया है, इंजरी के बाद वापस आया और वो ठीक बॉलिंग भी कर रहा है, बैटिंग भी कर लेता है। अच्छा कमेंट्स पे जल्दी आते हैं, फिर इस पे थोड़ी सी और रोशनी डालते हैं। अशफाक साहब कहते हैं कि भाई शान मसूद को एक सियासत के तौर पर टीम में लाया गया है ताकि शर्जील खान टीम में ना आ जाए, क्या कहते हैं आप इस पे?
यार मेरा नहीं ख्याल सियासत की वजह से है, शान मसूद ने प्रूव किया है, वही हम उसके बारे में काफी अर्सा पहले से बात करें कि उसको टीम में होना चाहिए। तो उसने परफॉर्म किया है, जो उसने काउंटी खेली है वहां पे खेला है अच्छा, बिग बैश अच्छा वगैरह खेला है। तो मेरे ख्याल शान मसूद तो वो डिजर्विंग था, उसको एटलीस्ट चांस देना चाहिए था, लेकिन वो अलग बात है, वो अब टीम में आके परफॉर्म नहीं कर रहा, और हो सकता है शायद जो टेम्पलेट है हमारा वो टेम्पलेट उसको उस तरह इजाजत नहीं दे रहा, टेम्पलेट का भी इशू है। सियासी प्लेयर तो नहीं है यार।
वो देखो वो उस नंबर पे भी नहीं खेल रहा जिस नंबर पे वो खेलता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हो ना, तो इस पूरे साल का अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखो तो पूरे साल में सारी T20s की आप डोमेस्टिक का रिकॉर्ड निकाल देख लो, एलेक्स हेल्स टॉप स्कोरर है पूरी दुनिया में, सेकेंड नंबर पे शान मसूद है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि शान मसूद ने T20 क्रिकेट भी सबसे ज्यादा खेली है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी तो इंटरनेशनल T20 हुई नहीं, वो इंग्लैंड में भी खेला है, वो पाकिस्तान में भी खेला है, बाकी जगहों पे भी खेला है, तो वो तो मतलब परफॉर्मेंस के बाद ही आया टीम में। अच्छा गौरव साहब क्या कहते हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग अगर क्लिक करती है ऑस्ट्रेलिया में तो जीतेगी, वरना बैटिंग नहीं जिता सकती, ऐसे ही लग रहा है भाई।
ये तो गौरव साहब मुझे तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही लगता है, बल्कि पाकिस्तान में नहीं कहीं भी ये लोग खेले मुझे तो ऐसे लगता है कि बॉलिंग ही जिता सकती है पाकिस्तान की।
अच्छा असलम शेख साहब ने
पॉइंट वैसे अच्छा रेस किया है,
हाँ
पॉइंट अच्छा। वो शाहीन वाला पॉइंट अच्छा रेस किया है कि जिस तरह हमने बुमराह का देखा, बुमराह भी इंजरी के बाद वापस आया लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका इंडिया जो भी मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो हो सकता है शाहीन भी इस तरह स्ट्रगल करे, और काफी ट्रिकी
और देखो डेंजरस भी है ना। पहले जब आकिब जावेद ने बात की थी तो सारे लोग उन पे पिल पड़े थे कि भाई आप ये कैसे बात कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप छोड़ दो, शाहीन अफरीदी को जब उन्होंने बोला था. अब देखो बुमराह आया है और अभी ब्रेकिंग न्यूज भी चल रही थी कि अब ऑफिशियली बुमराह जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया. तो अब लोग बात तो करेंगे कि क्या जरूरी था बुमराह को ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में खिलाना, तो लोग तो बात करेंगे और वो बात जायज भी है कि आपने क्या जल्दी तो नहीं कर दी. अच्छा उमेर साहब, ये मुझे लगता है आपके भाई का कमेंट आया है, आमिर भाई का.
अच्छा जी, आमिर भाई कह रहे हैं इफ्तिखार के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का. यार इफ्तिखार के बारे में आमिर भाई ये ख्याल है कि सेकंड डाउन आ रहा है लेकिन वो वाला रोल प्ले नहीं कर रहा जो कि सेकंड डाउन वाले बंदे का होना चाहिए. काफी एग्रेशन वहां पे होनी चाहिए वो वाले रोल में, और इफ्तिखार वाला रोल सही प्ले नहीं कर रहा. अब मेरे ख्याल में इफ्तिखार की अच्छी रिप्लेसमेंट ये होती कि अगर यहाँ पे शुएब मलिक होता या उसकी जगह कोई और एग्रेशन वाला बंदा आ जाए जो कि आपकी इनिंग को बिल्ड करे. जिस तरह हमने सेवंथ मैच में देखा, उसको चांस था वहां पे थोड़ा एग्रेशन दिखाता, कुछ करता, लेकिन वो उस तरह नहीं किया. तो हमें एक सूर्या कुमार की तरह यहाँ पे एक बैट्समैन चाहिए इफ्तिखार की जगह, ताकि वो अच्छा खेल सके.
भाई सूर्या कुमार का तो 10% भी आपको मिल जाए तो बहुत है. सूर्या कुमार तो वंस इन अ जनरेशन वाला प्लेयर है. देखो इफ्तिखार ने जो लास्ट मैच में बैटिंग की थी, मतलब सेवंथ के बाद पिछले मैच में, वो ठीक बैटिंग की थी उसने. इफ्तिखार को जो एज मिल रहा है, आई थिंक वो मिल रहा है उसकी बॉलिंग पे. ठीक है, अगर वो बॉलिंग ना कर रहे होते तो उनपे बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होता, वो अपना रोल तो अदा नहीं कर रहे बैटिंग में, ये तो क्लियर बात है. लेकिन बॉलिंग में वो बहुत बड़ा एज दे रहे हैं. अच्छा, आमिर भाई ने पहले भी एक ये मैसेज किया हुआ था, कमेंट किया हुआ था कि दे नीड टू टेक सम एग्रेसिव डिसीजंस नाउ, मिडिल ऑर्डर टोटली कोलैप्स. ठीक है, तो बात तो ठीक है, लेकिन अब आमिर भाई मसला ये है कि वही बात है, 23 को मैच है पाकिस्तान इंडिया का, अब क्या एग्रेसिव डिसीजन ले सकते हैं, 20 दिन रह गए पीछे. तो अब तो जो होना था वो हो गया.
ये वही बात है, अगर अभी इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया तब भी इन पे बातें होनी है कि भाई आपने 2 साल से एक ही स्क्वाड रखा हुआ है उनको खिला रहे, और अगर अभी डिसीजन लिया तो फिर इन्हीं के ऊपर बातें स्टार्ट हो जाएंगी.
अच्छा, SS98 कह रहे हैं वही जो बात है, बुमराह ऑफिशियली रूल्ड आउट, शामी और चाहर टू रिप्लेस हिम.
यार ये तो फाइनल हो गया मेरे ख्याल में, चाहर आ रहा है ना इसकी जगह, बुमराह की जगह.
यार मैंने नहीं देखा क्योंकि अभी ब्रेकिंग न्यूज ये चल रही थी कि शॉर्टली रिप्लेसमेंट अनाउंस होगी. आई डोंट नो कि अभी मैं वीडियो बनाते हुए अगर होगी ये तो.
वैसे आप क्या चाहते हैं, जलाल साहब कौन आए बुमराह की जगह? मुझे पता है कि उनके लेवल का तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी कौन उनका एक थोड़ा एक एज हो सकता
है? देखो शामी तो सेफ एक ऑप्शन है, शामी सेफ ऑप्शन है. मैं तो चाह रहा था कि आउट ऑफ द क्या से कहते हैं ब्लू को ये एक ऑप्शन लेते समवन लाइक उमरान मलिक. मोहसिन खान का तो वो SS98 ने मैं बताया था वो इंजर्ड है और वो NCA में रिहैब हो रहा है उनका. लेकिन चाहर भी एक अच्छी ऑप्शन है कि आपको, लेकिन चाहर और फिर भूवी बड़े सिमिलर हो जाते हैं यार, ये मसला है थोड़ा. चाहर और भूवी सिमिलर हो जाते हैं,
चाहर थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है मेरे ख्याल में.
जहां स्विंग होगी वहां तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन जहां स्विंग नहीं होगी वहां थोड़े क्वेश्चन मार्क,
वहां एक्सपेंसिव काफी. मेरे ख्याल शामी बेहतर ऑप्शन है, शामी सेफ ऑप्शन देगा आपको, सेफ ऑप्शन है, अच्छी ऑप्शन है.
अच्छा, गौरव साहब ने एक बड़ा लंबा सा कमेंट किया हुआ है, वो थोड़ा ऊपर करके है, अगर आप उसको पढ़ सकें तो देख लें, उधर तक पहुंच जाएं उतनी देर में अगला पढ़ लेता हूं. कि विकास साहब कहते हैं वर्ल्ड कप विनर इज साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया. यार देखो, इंडिया साउथ अफ्रीका की टीमें अच्छी लग रही हैं, इंडिया की मुझे बॉलिंग की अभी तक समझ नहीं आ रही भाई. तो मैं इंडिया को ना इस दफा, इवन दो मोइन अली ने भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को फेवरेट बोला है, मैं इस दफा इंडिया को फेवरेट नहीं बोल रहा क्योंकि बॉलिंग इंडिया की मुझे हल्की लग रही है. बैटिंग नो डाउट वर्ल्ड क्लास है, शायद बेस्ट बैटिंग है टूर्नामेंट से पहले अगर हम देखा जाए. साउथ अफ्रीका इज अ गुड टीम,
साउथ अफ्रीका भी अच्छा कंपेटिटर है, लेकिन मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड यार बहुत जोर होंगे उनका, मतलब वो काफी वहां पे ना अच्छा टाइम देंगे. इवन न्यूजीलैंड भी, न्यूजीलैंड का भी वहां पे
बड़ा, न्यूजीलैंड को तो हमेशा कभी कोई खाते में लाता ही नहीं ना, वो तो फिर वर्ल्ड कप में ही खाते में आते हैं. पहले तो वर्ल्ड कप से पहले कोई न्यूजीलैंड का जिक्र नहीं करता.
बिल्कुल यार, लेकिन 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 उनकी लक अच्छी नहीं रहती. आपको याद है फाइनल भी हार गए थे जो पहले हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड वाला भी हार गए. प्रेशर मेरे ख्याल में ले
यार इंग्लैंड वाला तो बहुत ही कोई, वो तो खैर टाई हुआ था, पता नहीं आज तक न्यूजीलैंड में ज्यादती हुई है. अच्छा इश्फाक अली साहब कहते हैं भाई, अच्छा सॉरी मैं ये पढ़ देता हूँ पहले फिर आप वो पढ़ दो. भाई आपके प्रोग्राम ने दिल खुश कर दिया है, खुश दिल ने निराश कर दिया, क्या बात है यार. देखो चलो कुछ तो आपको राहत मिली. अच्छा पढ़ दो आप.
अच्छा अच्छा, गौरव साहब कह रहे हैं पाकिस्तान जब तक बायलेटरल सीरीज हारने से डर कर न्यू टैलेंट को चांस नहीं देगा तब तक इम्प्रेसमेंट नहीं होगी, क्योंकि इंडिया बहुत हारी है बहुत हारी है सीना कंट्री में, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं छोड़े और फिर जीती सीना में।
नहीं बिल्कुल, वो इम्प्रूवमेंट आई थिंक लिखना चाह रहे थे। सही कह रहे हैं,
तो मेरे ख्याल में बात सही करें, और ये क्रेडिट जाता है राहुल द्रविड़ को, उन्होंने काफी ज्यादा चेंजेस की, काफी ज्यादा रोटेशन पॉलिसी चलाई, और उस वजह से इनको इस तरह रिजल्ट सारे शो हुए।
यार देखो तो, दोनों वे हैं उमेर, हमने उनको पहले राहुल द्रविड़ को हमने अप्रिशिएट भी किया, फिर हमने क्रिटिसाइज भी किया। मैं बोलूंगा कि इंडिया ने थोड़ा सा ज्यादा ना एक्सपेरिमेंट कर दिया, क्योंकि आपने देखो ओपनर्स पे कितने बंदे ट्राई किए लेकिन किसी को आपने फिर वो नहीं रखा, एंड में आप केएल राहुल पे ही गए हो। सही है, तो कहीं ना कहीं हुआ इंडिया में भी वही है कि वो उनको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली इतनी ज्यादा ट्राई करने के बाद। बॉलिंग लाइनअप में भी देख लो अब क्या हो रहा है कि इंडिया वही पुराने बॉलर्स की शामी की तरफ वापस आ रहा है, तो बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए।
हाँ बिल्कुल, हमने यही क्रिटिसाइज किया था कि मतलब ये लोग चांस दे रहे हैं काफी ज्यादा, लेकिन कोई बात है ट्रस्ट नहीं शो कर रहे, जिस तरह वही केएल राहुल फेसर आ गया था रोहित शर्मा के साथ, हालांकि हम बातें कर रहे थे भाई स्काई को इन्होंने ट्राई किया था टॉप पे, फिर वो दीपक हुडा बड़ा अच्छा खेला था, और वो
देखो ना वो तो अब हुडा को भी प्रॉपर उस तरीके उस नंबर के ऊपर चांस तो नहीं मिला जिस नंबर पे वो खेलता है, या आप उसका देख लो उमरान मलिक और आवेश की केस स्टोरी कितनी वो है कि आपने आवेश को चांस दे दिया, हालांकि आवेश नो डाउट अच्छा बॉलर है, लेकिन उमरान एक एक्स फैक्टर था। क्या उतने मैचेस अगर उमरान को मिल जाते जितने आवेश को मिले थे तो वो एक बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकती थी? तो ये कुछ
हाँ बिल्कुल
कुछ मसले तो उनके भी हैं।
आवेश को तो काफी चांस दिया यार,
आवेश को तो चांस
काफी ज्यादा चांस दिया, मेरे ख्याल में वो साउथ अफ्रीका के बाद से अभी तक खेलता ही आया है एशिया कप तो। लेकिन यार ये है कि स्काई यार अगर चल गया ना ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज्यादा बैड सीन हो सकता है।
स्काई को बस एक चीज ही प्रूफ करनी रहेगी है बड़े मैच में परफॉर्मेंस, और मेरा ख्याल है 23 अक्टूबर वो दिन है कि उसके पास एक मौका है। मैं चाह तो नहीं रहा कि वो मौका
मैं भी नहीं चाह रहा
लेकिन वो दिन है, वो दिन है वो स्काई का दिन हो सकता
है। बल्कि जलाल आपको याद है सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने दुआएं की थी कि भाई विराट कोहली परफॉर्मेंस करे वापस कमबैक मारे, और उसने देखे पाकिस्तान वाले मैच में कमबैक मार लिया था।
हाँ बिल्कुल,
फिर हर कोई कह रहा था यार ये क्या हो गया, क्या सीन हो गया।
अच्छा गौरव चौधरी साहब ने एक टेक्निकल पॉइंट रेज किया भाई, उन्होंने कहा नसीम को ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम होगी क्योंकि वह कोकबुरा बॉल ना के बराबर स्विंग होगी और नसीम डेक हिट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि नसीम को उतनी स्विंग नहीं मिलेगी, उतनी मूवमेंट नहीं मिलेगी, तो वो स्ट्रगल करेगा। यार आपकी बात में दम तो है क्योंकि नसीम टेस्ट मैच भी खेला था ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं थी, लेकिन अभी वो इम्प्रूव्ड बॉलर तो है, हिट द डेक वो कर सकता है, मतलब बैक ऑफ लेंथ जब वो बॉल करता है ये अलग बात है, वो शुरू में आगे बॉल छोड़ता है कि स्विंग हो, अब देखना पड़ेगा। सर बात आपकी टेक्निकल है थोड़ी,
बिल्कुल, बल्कि ये वाली बॉल को भी देखना पड़ेगा कि ये वाली बॉल पे कौन से बॉलर्स मतलब कि काफी अच्छा खेले इस तरह की बॉल पर।
इश्फाक अली साहब कह रहे हैं जलाल एंड उमेर भाई क्या हर रोज आपका प्रोग्राम आता है? ऑलमोस्ट हर रोज ही आता है सर, ये उमेर साहब गोली करा दें एक अलग बात है।
इश्फाक भाई बस वो थोड़ी सी बीच में नहीं आए हम 2-3 दिन, उसमें थोड़ा इशू था, लेकिन वैसे हम कोशिश करते हैं कि रोज आए, वैसे हम इंस्टाग्राम पे भी अपडेट दे देते हैं, ट्विटर पे भी अपडेट दे देते हैं कि हम लोग इस टाइम पे आएंगे, तो आप जरूर हमें वहां भी फॉलो करें और यहाँ भी सब्सक्राइब करें और आपको जरूर बताएंगे।
नहीं को ये भी ये हफ्ता थोड़ा उमेर साहब का थोड़ा टफ है, फैमिली कमिटमेंट्स है कुछ, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह हम कोशिश ही करेंगे हर रोज आए। अच्छा राबी साहब कह रहे हैं आमिर जमाल इज बेटर देन दहानी। अच्छा जी।
यार जलाल आपको याद होगा कि हमारी एक बड़ी हॉट डिबेट हुई थी आज से 4-5 दिन पहले,
हाँ
नहीं 5-6 दिन मेरे ख्याल में हो गए, जिसमें आप बोल रहे थे कि आमिर जमाल को चांस देना चाहिए, खुशदिल की जगह आई थिंक आपके
खुशदिल की जगह मैं कह रहा था।
उस टाइम मैं कह रहा था कि यार आमिर जमाल को उस तरह नहीं मतलब एक्सपीरियंस नहीं है इतना, तो अब जब इन्होंने ये बात की है तो मैं बोलूंगा यार आमिर जमाल मतलब ना उसको देना चाहिए, क्योंकि उसने जिस तरह डेथ ओवर कराया है ना आखिरी, और वो भी मोइन अली को, तो बनता है उसका मतलब ना
यार। अब लेकिन मसला ये हुआ ना, मैं चाह रहा था आमिर जमाल को वो ट्राई करते खुशदिल की जगह पे, क्योंकि आपने खुशदिल को एज एन ऑलराउंडर सेलेक्ट किया था, अब आप उसको एज अ बेटर समझो तो एक अलग बात है, लेकिन सेलेक्ट वो ऑलराउंडर के तौर पे हुआ था, लेकिन जब आप टीम में डालते हो तो आप आमिर जमाल को पूरे बॉलर के तौर पे खिलाते हो या मोहम्मद वसीम को पूरे बॉलर के तौर पे खिलाते हो, वो बाबर की और टीम मैनेजमेंट की कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही कि कैसे आप इनको पूरा पेसर समझ सकते हो? इसको इनको ट्रीट करना चाहिए हार्दिक पांड्या की तरह, जैसा इंडिया ट्रीट करता है ना, कि हर दफा तो आप चार ओवर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते इनसे।
बिल्कुल ऐसा ही है।
अच्छा, SS98 साहब, सूर्या कुमार साहब की सवाल पूछ रहे हैं आपसे, कैन ही बिकम द मैन ऑफ द टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड कप? इस फॉर्म में तो लग रहा है,
क्या जो फॉर्म है वो तो लगता तो है कि सूर्या कुमार बड़ा है, क्योंकि यार बहुत ज्यादा मार रहा है ये बंदा, और ये फॉर्म में भी है। अच्छा आप देखिए जलाल, एक और बात यहाँ पे, हमारे बाबर आजम और रिजवान टॉप पे, ठीक है,
हाँ।
वो लोग फेसर्स आते हैं, ऐसा ही है
बिल्कुल।
अब सूर्या कुमार सेकंड डाउन आ रहा है, ठीक है, और वो कम्पीट कर रहा है, तो मैं कहता हूँ बड़ी अचीवमेंट है ये, मतलब ना।
नहीं, ये बड़ा प्यारा पॉइंट आपने रेस किया, और आपने पिछले एक एपिसोड में से सवाल भी किया था शायद कि आपके ख्याल में सूर्या कुमार यादव और रिजवान में से नंबर वन कौन सा है, तो मैंने उस टाइम बोला था रिजवान नंबर वन है, मैंने ये चीज नहीं सोची थी उस टाइम के ऊपर, मैंने रिजवान इस जैसे नंबर वन बोला था कि वो इनसेन कंसिस्टेंसी है उसकी, मतलब उतनी कंसिस्टेंसी, और फिर ये भी पता हो कि बाबर और रिजवान को कि भाई हम गए तो टीम गई, मतलब ये वाला सीन है ना बेसिकली, उसके बावजूद इतनी कंसिस्टेंसी दिखाना, तो इस वजह से मैं उनको नंबर वन कंसिडर करता था और अभी भी शायद करता हूं, लेकिन ये बात आपने बहुत प्यारी की है कि मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन T20 फॉर्मेट में बहुत बड़ी बात है अगर वो ओपनर्स और टॉप ऑर्डर से वो कम्पीट कर रहा है।
अच्छा वो रिजवान से मुझे याद आया जलाल, आपको याद होगा अभी जिस तरह 7 T20 पे आउट हुए, मतलब बॉल इतनी ज्यादा स्विंग नहीं हो रही थी,
लेग पे खेल गए
उनका जो, हाँ, लेग पे खेल गए, तो मेरे ख्याल में ये इनका वीकनेस एक है पॉइंट, बॉल ही लेंथ पे ये अगर आउट हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया,
यार वो टॉपली,
अगर ये लोग थोड़ा डेटा, अगर थोड़ा डेटा को एनालाइज करें तो मेरे ख्याल में इस तरह काम हो सकता है, क्या ख्याल है?
यार आप डेटा साइंटिस्ट है ना, आप लोगों को ना बताओ ना यार, अभी खेलने दो, एक ही तो बैट्समैन कंसिस्टेंट है यार, वो टॉपली इतना टॉप से भी तो आता है ना, उसकी फुल बॉल भी आपको समझ तो नहीं लगती होगी कि ये फुल आ रही है, वो मसला हो जाता है ना, वो जैसा मोहम्मद इरफान का होता था।
बिल्कुल।
अच्छा हजीक कुरैशी साहब पूछ रहे हैं, अगर आपके टॉप 5 बैटर्स का स्ट्राइक रेट लेस देन 130 हो तो आप कैसे वर्ल्ड कप में टॉप साइड्स को कम्पीट करेंगे? जेन्युइन बात है
भाई इधर, बल्कि इनकी बात से मुझे याद है, मैंने एक स्टैट सामने खोले हुए थे जो सेवंथ अभी जो मैचेस हुए ना पाकिस्तान इंग्लैंड के, उसमें मैंने निकाल रहा था, मैं देख रहा था कि यार इनका स्ट्राइक रेट कैसा है, ठीक है। अब मोहम्मद रिजवान ने 6 मैचेस खेले 138 की स्ट्राइक रेट से खेला, सही है। बाबर आजम ने 143 के स्ट्राइक रेट से खेला, और फिर हैरी ब्रोक आता है 163 के स्ट्राइक रेट से, और फिर डकेट आता है 159, और अगर मैं यहाँ पे फिल सॉल्ट का आपको बताऊं जो के वो भी फेस कर
जो एंड में जाग गए,
सॉल्ट जो एंड में जाग गए, और वो भी बड़े मजे की स्टोरी है, उस पे वो भी आपको बताता हूँ। फिल सॉल्ट का 157 का स्ट्राइक रेट है। अब वो जो मैं आपको बात बता रहा था, ये जिस तरह आउट हुए रन आउट आपने देखा है, वो हाँ। भी स्नैन ने पूरी कोशिश की थी कि ये यहाँ पे रन आउट ना हो।
अच्छा, और शदाब का भी तुक्का लग गया कि उसने बड़ी पोली सी थ्रो मारी कि हसनैन पकड़ के आगे रन आउट कर ले, वो डायरेक्ट हिट लग गई, तो वो भी पाकिस्तान लकी रह गया था। लेकिन बात बड़ी जेन्युइन की है हजीक साहब ने यार, कि स्ट्राइक रेट का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है यार।
बिल्कुल
यार, मुझे इमरान नजीर, अब्दुल रजाक, शाहिद अफरीदी अब याद आते हैं यार, सईद अनवर अपने टाइम से पहले पैदा हो गए,
इमरान नजीर यार,
अजहर महमूद भी टाइम से पहले पैदा हो गए,
लेकिन इमरान नजीर यार लेवल था उसकी तो। बल्कि मैं उस दिन वो सलमान बट के ही सुन रहा था वीडियो, उसमें उन्होंने तारीफ की थी कि भाई अगर यहाँ पे इमरान नजीर होता तो फिर क्या बनता यार, वाकई इमरान नजीर का लेवल था काफी।
बस वो रन आउट कराया था ना, आई थिंक 2007 वाले वर्ल्ड कप में यूनस खान ने इमरान नजीर को, वरना वो तो फाइनल
189 मारा था।
नहीं, 2007 वाला T20 वर्ल्ड कप की बात करूं जो इंडिया जीता था, इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में,
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
इमरान नजीर बड़ा फिट खेल रहा था, पहले यूनुस खान ने रन आउट करा दिया, फिर यूनुस खान खुद चलते बने। खैर यूनुस खान ने फिर आगे कप्तानी वर्ल्ड कप भी जिताया, ये भी है। अच्छा,
और उसके बाद वो भी हरवाया क्वार्टर फाइनल अगर आपको याद हो, जिसके बाद से कैप्टेंसी चली गई उनकी, बड़ा आसान कैच था वो, तो हम भी पकड़ लेते यार।
अच्छा गौरव साहब क्या कह रहे हैं कि इंडिया एज गिल जसवाल,
गिल
जैसे यंग, अच्छा वो कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल है कि यंग बैट्समैन, यंग प्लेयर्स को वो ग्रूम कर रहा है, और वो सून चमकेंगे, मतलब इंटरनेट बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल ये बात ठीक।
देखे ना गौरव भाई, आप देखे संजू सैमसन, मतलब वो कितना कमाल का, गिल के बारे में जो बात हो रही है, गिल ने भी कितना अच्छा खेला है जो पिछली सीरीज हुई थी एशिया कप से पहले। तो अच्छा मजे की बात, वो शिखर धवन कैप्टन था ना उस सीरीज में जिसमें गिल फेस करा था धवन, उसमें वो शिखर धवन कहते हैं कि मुझे रोहित शर्मा जैसा लगा है।
टाइम बहुत है यार उस बंदे, बहुत टाइम है अभी। वो क्या नाम है, पृथ्वी, पृथ्वी करके भी एक नाम है ना लड़के, पृथ्वी शॉ, हाँ
नाम है।
वो भी तो बड़ा अच्छा खेलता है, बड़े प्लेयर्स हैं यार इंडिया में अभी। अच्छा ये क्या कहते
हैं, गायकवाड है, गायकवाड अगर आपको याद हो उसकी इनिंग हम देखते थे, याद है आपको, वो भी बड़ा लेवल का।
चेन्नई
ऑप्शंस वैसे पाकिस्तान के पास भी बहुत है, जिस तरह हमने देखा नेशनल टी20 में साई मयूब यार, तैयब ताहिर, साहिबजादा फरहान
यार। मैं बताऊं इंडिया पाकिस्तान के पास ना, मुझे जो लग रहा है दोनों के पास सेम बैटिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि उधर भी ना टॉप ऑर्डर मतलब ओपनर्स की ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं और पाकिस्तान में भी ओपनर्स के ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं, और उधर भी केएल राहुल और रोहित शर्मा या धवन फिक्स्ड हैं और यहाँ पे भी फिक्स्ड हैं। ठीक है, वनडे में फखर और इमाम फिक्स्ड हैं और यहाँ पर रिजवान और बाबर फिक्स्ड हैं। ठीक है, तो अब जितने भी शर्जील, शान मसूद, साय मयूब, तैयब ताहिर, जो भी आप ले आओ नाम, जो मतलब इवन फखर जमान, फखर जमान नहीं ओपनिंग कर पा रहा, तो इंडिया का भी वही मसला है देखो।
इंडिया का भी मसला। अच्छा जलाल, एक और प्लेयर मुझे याद आया, आपने देखा होगा जमान खान।
हाँ बॉलर,
बड़ा क्लासिक बॉलर है यार, बड़ा क्लासिक
वो भी लगता है आ जाएगा
भी चांस। वो किसकी जगह आएगा अभी आपके ख्याल में, जगह बन रही है बॉलिंग में किसी
को? नहीं देखो जगह बनती है, ये प्लेयर्स इंजर्ड होंगे आपके, जिस तरह के बॉलर्स है ना हमारे, ये इंजरी होती रहेगी इनको, रोटेशन पॉलिसी। जिस तरह मार्क वुड को खिलाया ना, अब 7 मैचों में कितने मैच खिलाए, 2
दो या 3 खिलाए,
भाई इस तरह हमें भी मैनेज करना पड़ेगा यार, स्क्वाड हमें बड़ा रखना पड़ेगा बॉलर्स का। अच्छा अशफाक अली साहब क्या कह रहे हैं, आफ्टर 6th मैच बाबर ने कहा कि 10 रन कम रह गए थे, भोले बाबर आपको
ये बड़ी अच्छी बात की है,
आपको ये कहना चाहिए था कि 70 रन कम रह गए क्योंकि 33 बॉलर रहती थी इंग्लैंड मैच जीती या हैवी।
अच्छा हैवी। ये वाला जो इनका नहीं है, जो पोस्ट मैच में आके कहते हैं कि यार 10 रन शॉर्ट है 15, ये मेरे ख्याल में ये पिछला मैच जो हुआ था फिर उस पर भी इन्होंने ऐसे ही बोला। हर मैच में इनका ना इसी तरह ही होता है कि 10-15 रन शॉर्ट थे, वो तो
जिस तरह बाबर के हर जुमले में ना डेफिनेटली या जो ना बिल्कुल वो फिक्स्ड होता है, इस तरह ये 10 रन भी फिक्स्ड होते हैं। इशफाक अली साहब आपने बड़ी प्यारी बात की है, आपके लिए तालियां बज रही हैं।
बाकी जो लोग हमें सुन रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल और हमें फीडबैक दें, बताएं कि भाई क्या सीन है, कैसा चल रहा है। और जलाल आप कुछ सोशल मीडिया के बारे में बताना चाहेंगे, पॉडकास्ट के बारे में जो हम स्पॉटिफाई पे एप्पल पे?
हाँ भाई सोशल मीडिया का तो मैंने बता दिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब पे हम हैं। आप गूगल पे जाके टॉक बिफोर विकेट लिखेंगे, आपको सारी जगह पे हम आ जाएंगे। हमारी वेबसाइट भी है talkbeforewicket.com और गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, एप्पल, सारे बड़े पॉडकास्ट पे हम मौजूद हैं, लेकिन अभी हम जाने नहीं लगे क्योंकि अभी कमेंट्स रहते हैं। नेता साहब कहते हैं शामी इज रियली बैड एट डेथ। यार ये इसलिए मैं कह रहा हूँ इंडिया को मैं फेवरेट इस वजह से नहीं कह रहा था वर्ल्ड कप के लिए कि इंडिया की बॉलिंग कंसर्न है, और वाकई शामी, इवन चाहर, बुमराह की रिप्लेसमेंट तो कोई नहीं है यार, जैसा शाहीन
नहीं,
की नहीं है, बुमराह की
दुनिया में नहीं, हाँ बुमराह की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा अगला कमेंट किनका है
यार, ये बड़ी प्यारी बात की, इधर एक और अप्लॉज बनता है, ये उमेर साहब मैं आपको कह रहा था, आप बबूमा की एक टाइम के ऊपर साइड ले रहे थे, साउथ अफ्रीका कैन विन वर्ल्ड कप इफ दे रिप्लेस बबूमा विद रीजा हेंड्रिक्स। क्या बात कर दी यार,
वो जो ये लगता है इन्होंने आपके वो दिल की बात की है, बिल्कुल जो परफॉर्म किया था हेंड्रिक्स ने,
बिल्कुल। ये नेता साहब मैं और उमेर ऑफलाइन बड़ी गुफ्तगू करते रहे, बबूमा नो डाउट टेक्निकली बड़ा अच्छा बैट्समैन है लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट का बैट्समैन है। बबूमा के साथ ट्रेजेडी हुई है कि उसको अपनी साउथ अफ्रीका की जो T20 लीग हो रही है उसमें किसी टीम ने नहीं उसको बिड किया, और अभी भी आपको नजर आ गया होगा कि मतलब जिस तरह हमारे बाबर रिजवान पे क्रिटिसाइज होता है स्ट्राइक रेट का, तो बबूमा का तो और भी हिसाब खराब है स्ट्राइक
उनकी
रेट
का। तो उनकी कैप्टेंसी पे भी काफी हुई है बातें, तो ये पे अभी जो सेकंड मैच हुआ उस पे
बिल्कुल यार ये नेता साहब के लिए भी ना, नेता साहब के लिए भी अप्लॉज आ गई। अच्छा राबी साहब क्या कहते हैं भाई, अच्छा पहले विकास भाई का है, पाकिस्तान क्योंकि इतना स्लो खेलता है यार मजा नहीं आता है इस तरह का क्रिकेट देखने में, पावर हिटर नहीं है क्या जो मैच का पासा पलट दे 1 or 2 ओवर में। यार बात तो आपकी जेन्युइन है, हालांकि पाकिस्तान हमेशा से मशहूर था 1990s से कि जी पावर हिटर पाकिस्तान टीम में होते थे और भरपूर तादाद में होते थे, हमारी तो गेम ही यही थी। और T20 क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है जो जब आई नहीं थी तब भी पाकिस्तान में खेली जाती थी, ठीक है, तो पाकिस्तानी तो T20 क्रिकेट बचपन से खेल रहे हैं, हम खुद देखते रहे हैं खुद खेलते रहे हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, डिसअपॉइंटिंग टू से द लीस्ट यार, नहीं वो मज़ा नहीं, हमें भी नहीं आ रहा, आप भी ठीक कह रहे हो नहीं मज़ा आ रहा।
राबिया जावेद कह रही है 23 अक्टूबर में,
अबे राबी जावेद भाई हैं ये, तू राबिया बना देता बड़ी तुझे खुशी, मतलब ये दिल के अरमान आंसुओं में बह जाते हैं तेरे हर दफा हैं, राबिया बनाई बैठे।
थोड़ा लैपटॉप दूर पड़ा है तो इस वजह। अच्छा 23 अक्टूबर में भी इंडिया विन अगेंस्ट पाकिस्तान
लग
यार, मेरा दिल तो खैर है पाकिस्तान जीते, लेकिन जो हालात बता रहे हैं जिस तरह इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला है और अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहा है तो इंडिया फेवरेट है।
देखो यार जो पिछले मैचेस हुए हैं ना इंडिया के वर्ल्ड कप वाला या एशिया कप वाला, उसमें पाकिस्तान टीम ना एक पॉजिटिव फ्रेम माइंडसेट के साथ आ रही थी और वो मैचेस जीत के आ रही थी, टीम हाई पर थी, ठीक है। अभी ये जो 23 अक्टूबर वाला मैच है ये पाकिस्तान इस वजह से मुझे लगता है शायद हार जाएगी या सकती है हार सकती है, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल नीचे लगा हुआ है, ठीक है, अभी टीम में कोई पॉजिटिविटी नहीं है।
अगर न्यूजीलैंड में खेल जाते हैं ये लोग अच्छा खेल जाते
यार, आपका फर्गोसन नहीं है, आपका बोल्ट नहीं है, आप खुद बता रहे हो केन विलियमसन नहीं है, तो क्या मजा आना है उसका, हरा भी देते हैं तो। लेकिन ओवरऑल बात ठीक है आपकी, हो सकता है मोमेंटम पकड़ लें, लेकिन अभी आज की तारीख में अगर बात करो तो पाकिस्तान बिल्कुल थले,
हाँ वो तो ऑब्वियसली,
और इंडिया देखो ऊपर जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है, साउथ अफ्रीका को हराया है, तो ऑब्वियसली वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा गौरव साहब कह रहे हैं उमरान को ग्रूम कर रहे हैं MRF एकेडमी में, जल्द उमरान चमकेगा वर्ल्ड क्रिकेट में। यार देखिए गौरव साहब बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं ग्रूम करने की, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फास्ट बॉलर जो होते हैं ना जो 150 करा सकते होते हैं उनका आप टाइम ज़ाया नहीं करते। आप शोएब अख्तर या मोहम्मद जाहिद की अगर आप एग्जांपल लें तो वो मुंह से कहते थे कि हमारे पीक के साल हमारे ज़ाया हो गए, ठीक है। फास्ट बॉलर की इतनी फिटनेस नहीं हो सकती, इनका लाइफ स्पैन ये नहीं हो सकता कि ये 35-36 साल की उम्र तक बॉलिंग उस तरह करते रहेंगे। ये आए आपने इनको यूटिलाइज किया, पाकिस्तान क्यों बेहतर कर लेते हैं अपने फास्ट बॉलर्स के साथ, इवन तो हमारे फास्ट बॉलर लंबा नहीं खेलते, कम ही लंबा खेलते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम लोग चांस दे देते हैं, तो इंडिया कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो उस तरह चांस नहीं देता फास्ट बॉलर्स को, ग्रूम नहीं कर पाता। देखो उमेश यादव जैसा बॉलर अगर इंडिया में जाया हो जाए ना तो बड़ा दुख होता है।
तो बड़ा अच्छा बॉलर था। अच्छा वैसे ये जो बात की है उमरान की, इसने बड़ा अच्छा एक वो आपको याद होगा एक आखिरी ओवर भी कराया था जो इनकी सीरीज हुई थी आयरलैंड के साथ, तो वो ओवर भी सही था इसका, एक बॉल उस पर थोड़ी खराब कराई थी लेकिन वो भी आखिरी ओवर था, काफी प्रेशर मैच था वो, उस पर उन्होंने सही बॉल करा दी थी
यार। देखो
काफी अनएक्सपेक्टेड था।
उमर साहब आपको भी पता है पेस पेस होती है, ठीक है। अब ये नेता साहब भी कह रहे हैं कि इंडिया ने आवेश को इस वजह से ज्यादा चांस दिए क्योंकि वो हिट द डेक काइंड ऑफ बॉलर है, ठीक है। लेकिन नेता साहब बात यह है, अगर आप कभी नेट्स में जाए ना और आपने 2 महीने 3 महीने या इवन साल को बल्ले को हाथ भी ना लगाया हो ना, अगर आप नेट्स में जाए ना तो आप 120-130 वाली गेंद को ना आराम से खेलना शुरू कर देंगे, ठीक है। हो सकता है आपसे शुरू में थोड़ी सी मिस हो क्योंकि आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं बनी हुई, लेकिन 120-130 बड़े आराम से आप खेलेंगे। द मोमेंट आप अपनी जो है ना नेट वाली जो बॉलिंग मशीन है उसकी स्पीड बढ़ाएं 140 से ऊपर लेके जाएं ना, आपको डर लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और 150 से अगर ऊपर चली जाए ना भाई, मतलब है वो तो नजर ही नहीं आती, वो तो आपका रिएक्शन टाइम ही बहुत कम होता है। तो ये बॉलर वंस इन अ लाइफ वाले बॉलर्स होते हैं, इनका टाइम नहीं जाया करना चाहिए, मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा हजीक साहब,
हजीक कुरेशी कह रहे हैं मैं कहता हूं जो प्लेयर लास्ट 3 ईयर से खेल रहे हैं वही वर्ल्ड कप के लिए जाएं, नहीं तो किसी को ड्रॉप कर दिया जाता है। पाकिस्तान की पोजीशन खुदा ना ख्वास्ता खराब हुई तो यही प्लेयर्स वापस आ जाएंगे।
ठीक बात है यार, देखो मैं अपने कल भाई से भी ये बात कर रहा था कि हमने निकाला इसको, हमने तो नहीं निकाला, पाकिस्तान टीम ने निकाला, क्या नाम है यार इसको, हैदर अली को, ठीक है, कि भाई हैदर अली को चांस मिले, हैदर अली ने परफॉर्मेंस नहीं दी उस तरीके से, टीम से बाहर हो गया, फर्स्ट क्लास में गया, रनों की भरमार लगा दी, वापस आ गया। शान मसूद टेस्ट मैच से टेक्निकली बाहर हुआ था, आउटसाइड ऑफ स्टंप स्ट्रगल कर रहे थे, बाहर हुए, फर्स्ट क्लास में गए, रनों की भरमार लगा दी, वापस आ गए। अब जिस गलती पे हैदर अली बायर हुआ था वो थी शॉर्ट बॉल वगैरह पर ये स्ट्रगल कर रहे थे, वो गलती अभी भी उसी तरह है। या तो हमारी फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड ही खराब है, यही हो सकता है कि वही प्लेयर्स दोबारा आ जाते हैं और गलतियां उनकी रिजॉल्व नहीं होती, मतलब ये इस चीज़ की वाकई नहीं समझ आती कि क्या हो क्या रहा है। ये हमने उमर अकमल, कामरान अकमल, वही सारे प्लेयर्स वही वापस आ जाते हैं लेकिन उनकी मिस्टेक्स नहीं ठीक हुई कभी भी।
बिल्कुल, और अभी यार ये शॉर्ट पिच वाली जो बात है ये तो बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का।
हाँ,
मतलब कि हमने ये एशिया कप में भी देखा, अभी भी देखा कि शॉर्ट पिच नहीं खेल सकते, कि वो सही तरह पिक ही नहीं हो रही। हैदर अली भी आउट हुआ उस पे, बाबर भी आउट हुआ, इफ्तिखार भी सेवंथ मैच में उसी तरह आउट हुआ। और मजे की बात एक आपको याद होगा, खुशदिल ने चौका मारा था शॉर्ट पिच बॉल पे, तो वो उसने बड़े अजीब तरीके से खेली थी, वो मतलब बनती नहीं थी उस तरह आप आगे बढ़ के इस तरह पुल मार।
खुशदिल की एक ही शॉट है पूरे जो मुझे लास्ट पूरे एक साल में जो मैं अगर याद करूँ ना, वो जो इंडिया वाले मैच में आई थिंक उसने भूवी को मारी थी, आई थिंक चौका पुल पर, ठीक है, वो भी जो बाउंड्री में उन्होंने फील्डर आगे बुलाया हुआ था और चौका चला गया था, वो एक ही काम की इनिंग्स या शॉट कह सकते हो जो खुशदिल ने मारी थी, ठीक है। तो बाकी तो उस तरह कोई मज़ा नहीं आया। बिकाश साहब कहते हैं पाकिस्तान कैचेस मिस करता है एवरी गेम में, चाचा क्यों खेलते हैं टीम में, बाबर आजम का नहीं यार ये आगे मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन देखो यार चाचू का जो है ना बॉलिंग का एडवांटेज है, और कहीं ना कहीं आप माने ना माने मोहम्मद हफीज की रिप्लेसमेंट नहीं आई, ठीक है, तो मोहम्मद हफीज आपको चार ओवर दे देते थे और वो बैटिंग भी कर लेते थे, इवन दो वो भी इनकंसिस्टेंट थे लेकिन उनकी पावर हिटिंग कैपेबिलिटी पे या एबिलिटी पे तो किसी को डाउट नहीं था कि वो एड विल छक्का मार सकते थे। और फिर शोएब मलिक, तो इफ्ती उनके क्लोजेस्ट ही आपको लगते हैं कि बॉलिंग में चार ओवर दे देते हैं, बैटिंग तो
यार। लेकिन जलाल हमने एशिया कप पे भी देखा, मतलब उसने खाली लास्ट मैच में बॉलिंग कराई थी ना, उससे पहले भी वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा था लेकिन उसको खिला रहे थे।
यार अब ये तो बाबर का ही कैप्टेंसी का मसला है ना, ना खुशदिल को यूटिलाइज किया बॉलिंग में, ना इफ्तिखार को, तो अब खुशदिल पे क्रिटिसिज देखो, अगर खुशदिल से बॉलिंग में करा लेते या खुशदिल बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दे देता तो शायद इतना उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी ना हो रहा होता,
ना होता।
जिस तरह चाचा पे थोड़ा कम हो रहा है ना, चाचू पे क्यों हो रहा है कि चाचू बॉलिंग अच्छी कर गए। इश्फाक अली कहते हैं जलाल भाई, उमेर भाई, पाकिस्तानी टीम में ऐसे खिलाड़ी हुआ करते थे जिनके नाम से टिकट बिका करते थे, सईद अनवर, अब्दुल रजाक, इमरान नजीर, शाहिद अफरीदी, क्या ऐसे खिलाड़ी पैदा नहीं हुए?
अशफाक भाई वो एरा था, एक वो एरा जैसे प्लेयर नहीं हो सकते, वसीम, वकार, सकलैन, इमरान नजीर, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रजाक, अजहर महमूद, क्या क्या प्लेयर थे यार, क्या क्या क्लास थी पाकिस्तान।
यार मैं ये बोलूंगा कि इस टीम में ना वो कैपेबिलिटी है और थी भी, अगर आप 6 महीने पहले से देखो, शाहीन अफरीदी एक सुपरस्टार बनने वाला खिलाड़ी है पोटेंशियली, जिसके नाम पे जिसकी बॉलिंग देखने बंदा टिकट लेगा, ठीक है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, जिसके नाम जिसकी बैटिंग देखने बंदा लेगा, T20 की बैटिंग नहीं मैं भी कह रहा, लेकिन जनरली एज अ प्लेयर अगर आप देखो, फिर आप वर्ल्ड क्लास में शादाब खान को भी देखोगे तो यार वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो, उसको बड़ा अंडर रेटेड है, मतलब क्योंकि हम उसकी वही बात है क्या, बैटिंग यूटिलाइज नहीं करते,
यूटिलाइज नहीं कर रहे
तो प्लेयर तो
वही बात है ना, सिर्फ ये दो तीन है ना, जैसा वो जो एरा की बात करें वो वाला, तो एरा बहुत बहुत मुश्किल है आना उस तरह।
ये बात तो जनमन है, वो प्लेयर्स, लेकिन यार उन प्लेयर्स ने अचीव कम किया ना, वो अंडर अचीवर थे, ये उनको दो वर्ल्ड कप जीतने चाहिए थे मिनिमम, वो नहीं जीते।
बिल्कुल बिल्कुल,
इन प्लेयर्स ने, ये प्लेयर्स उस कैलिबर के शायद ना हो लेकिन इन्होंने उनसे ज्यादा अचीव किया मेरी नजर में। With bowling a bit weak, India wants to go for par plus scores now. नेता साहब बिल्कुल ऐसी बात ही है, लेकिन हर मैच में देखो, टूर्नामेंट में आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि हर मैच में आपके बैट्समैन 200 से ऊपर स्कोर कर देंगे। अगली टीम भी कभी कभार अच्छी बॉलिंग कर सकती है, या आपके बैट्समैन का दिन नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि इंडिया की बॉलिंग जेन्युइन मसला है और टूर्नामेंट्स में कहीं ना कहीं बॉलिंग बहुत मैटर करती है आपकी। बैटिंग तो ठीक है, नो डाउट वर्ल्ड क्लास है इंडिया की।
नहीं बॉलिंग तो यार इंडिया की अभी वीक है, वैसे जो उनके डेथ ओवर्स हैं वहां तो काफी क्राइसिस है, और वो मैचेस भी इसीलिए हारे थे एशिया कप में भी, और इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया से भी हारे जो फर्स्ट मैच था वो भी इसी वजह से हारे थे।
वकास लतीफ साहब कह रहे हैं मेरे हिसाब से 11 ऐसी खिलाओ जिसमें शुरू के 4 बैट्समैन, 2 स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर। 4-2-3 कितने होते हैं
यार? 4-2-3 होते हैं ना आपके, 9 होते हैं,
बाकी दो कौन से खिलाने?
एक तो कीपर हो गया ना आपका,
एक कीपर हो गया, वो भी बैट्समैन हो गया।
हाँ वही बैट्समैन हो गया,
ऑलराउंडर।
अच्छा वैसे जो अभी जो वैसे थोड़ा ट्रेंड बदल गया है यार मेरे ख्याल में थोड़े, अब आपके ना ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बैट्समैन और बॉलर दोनों हो, बंदा मतलब आपके ना 4 एटलीस्ट ऑलराउंडर हो, सही है, 3 फास्ट बॉलर हो आपके पास और बाकी 4 आपके पास बैट्समैन, इस तरह करके कॉम्बिनेशन बनाए।
नहीं नहीं बिल्कुल सही,
लतीफ कह रहे हैं पाकिस्तान की 11 ऐसी, अच्छा ये वैसे कॉपी पेस्ट, सही है। नहीं यार बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा एक बल्कि आज तो बड़ा मजा आया चैट पे, काफी अच्छी अच्छी बातें पता चली। वो वॉलीबॉल को भी थोड़ा हम लोग स्टडी करेंगे, उसका क्या नाम था जलाल?
कुकाबुरा बॉल जो ऑस्ट्रेलिया में यूज होती है ना, उस पे स्विंग जनरली कम होती है, लेकिन हमारी बॉल जो अभी यूज हो रही है ना पाकिस्तान में, आई थिंक वो पहले ड्यूक बॉल जैसी थी, लेकिन अभी ऑफ लेट इन्होंने बॉल शायद चेंज किए, तो वो शायद कुकाबुरा के सिमिलर है, लेकिन बात ठीक है, वो स्विंग कम होती है, इसमें तो जेन्युइन बात है।
देखते हैं अभी न्यूजीलैंड में क्या होता है, न्यूजीलैंड के अगर वो उधर वो ग्राउंड है क्रिस्ट चर्च है, आई थिंक
क्राइस्ट चर्च
गार्डन करके नाम है, जहाँ पे क्राइस्ट चर्च, जहाँ पे आपका जो आपकी जो बाउंड्री है बहुत छोटी है, तो उधर हुए मैचेस तो बड़ा एक सेटबैक हो जाना है, क्योंकि आप क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो काफी बड़े बड़े ग्राउंड होंगे।
बिल्कुल उमेर साहब, मैं फाइनली देख रहा था कि हमने कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया, तो पॉइंट तो मेरे ख्याल है हमने तकरीबन कवर कर दिए, लेकिन एक आध आखिरी क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा। हमने बाबर की कप्तानी पे बात तो कर चुके हैं ओवरऑल, लेकिन एंडिंग नोट पे अगर हम बात करें, क्या वैसे अभी तक बाबर की कप्तानी से इन जनरली क्या आपको चीज़ सही लग रही है, क्या बुरी लग रही है, क्या आप सेटिस्फाइड हो?
यार बाबर की कैप्टेंसी से मैं नहीं हूँ इतना सेटिस्फाई, मतलब जिस तरह एक दो मैचेस में जैसा उन्होंने जो डिसीजंस लिए, जिस तरह इंडिया वाले मैच में नवाज को ऊपर भेजा, वो वाले डिसीजन बहुत अच्छे थे। उस तरह की डिसीजंस वो नहीं लेते राइट टाइम पे, वो मतलब उसी पे चलते हैं जो उन्होंने पहले डिसाइड किया हुआ होता है।
बिल्कुल।
एक और मैच मुझे याद है जिसमें उन्होंने थोड़ा एक और एग्रेसिव डिसीजन लिया था, आपको याद होगा इंडिया के साथ दूसरा मैच था पाकिस्तान का एशिया कप में, वहां पे इंडिया ने बड़ा एग्रेसिव स्टार्ट लिया था, तो वहां पे उन्होंने थोड़ा सा रंग टाइम पे डिसीजन लिए थे। उसके अलावा मैं मतलब उनका यही है कि वो जो सोच के आते हैं वो फिर उसी को एग्जीक्यूट करते हैं। एक चीज उनकी पॉजिटिव कैप्टेंसी में ये है कि वो अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं, और ये दो चीजें उनकी मुझे सही लगी है। आप क्या कहते हैं?
बिल्कुल सही बात है, और ये कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे बैक करने को और डिसीजन मेकिंग में ना, ये अल्ट्रा बैकिंग पे जा रहे हैं उस तरीके से कि मैं यही टीम है इसी टीम को मैं खिलाऊंगा, मतलब शायद वो इमरान खान माइंडसेट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान आया मतलब उस टाइम पे जो उन्होंने प्लेयर सेलेक्ट किए थे उन प्लेयरों में, अब वो इंजमाम वसीम वकार टाइप के प्लेयर्स अगर वो लेके आए थे तो इनमें और उनमें जमीन आसमान का फर्क भी है, लेकिन बात आपकी ठीक है, अल्ट्रा बैकिंग कर रहे हैं और राइट टाइम पे राइट डिसीजंस नहीं ले रहे, इवन दो फ्रस्ट्रेशन ये है कि आपने जो करेक्ट डिसीजंस लिए वो पे ऑफ कर गए, तो वो आपके लिए एक एग्जांपल होने चाहिए थे कि मैं नेक्स्ट मैचेस में भी ये कर सकता हूं, वो आपने नहीं किए, वो फ्रस्ट्रेशन थी। आपको इंडिया वाला मैच याद होगा वर्ल्ड कप वाले मैच में, पंत ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे और विराट कोहली, जब पंत ने थोड़ा सा मारना शुरू किया था तो उस टाइम के ऊपर शादाब खान लगा दिया था, और उस टाइम पे आधे लोग ही बैठ के कह रहे थे भाई अब पंत जो है ना शादाब खान की ऐसी फेंटी लगाएगा ना कि दुनिया याद रखेगी, ये गलत डिसीजन ले लिया। लेकिन क्या हुआ, उसने गुगली कराई, पंत ने स्वीप मिड विकेट पे मारने की कोशिश की और वो टॉप एज लग गया और आउट हो गया। अब वो डिसीजन क्या था, पे ऑफ कर गया। नवाज पे कभी भी वो बैट आप देख के आपको नहीं नजर आएगी, ठीक है। इसी जैसे मुझे लग रहा है इफ्तिखार पे वो जो चार चार ओवर निकालने शुरू कर दिए ना चाचू ने, वो नवाज को ले डूबेंगे। तो एक तो ये, अच्छा तो बाबर की कप्तानी से अभी तो हम सेटिस्फाइड नहीं है इन शॉर्ट। लास्टली, क्या आप पाकिस्तान की वर्ल्ड कप प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड हैं?
यार अगर मैं अगर यहाँ पे आपके क्वेश्चन में थोड़ा डिवाइड करूं, अगर आप बॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं बॉलिंग के, तो उस हिसाब से मैं सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। आपका जो टॉप ऑर्डर है और जो मिडिल ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर को भी मैं इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा बाबर और रिजवान को, वो बस अपना इंटेंट थोड़ा सा शो करें, वो बेहतर कर सकते हैं। बाकी जो मिडिल ऑर्डर है उस पर काफी ज्यादा क्राइसिस है, वो तो काफी ज्यादा क्राइसिस है। अगर 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 हमारे स्क्वाड वाले प्लेयर्स ही खेल जाएं, अगर उनका वही बात है कि राइट सिलेक्शन कर लें वो राइट टाइम पे, तो वो मेरे ख्याल में बेहतर हो सकता है आपका मिडिल।
हाँ, हमने एक एपिसोड भी की थी कि शायद प्लेयर्स का उतना मसला नहीं है, प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन का मसला ज्यादा है ना। बैटिंग ऑर्डर राइट है, राइट टाइम के ऊपर राइट बैटर नहीं बैटिंग करने जाता, राइट टाइम के ऊपर राइट बॉलर बॉलिंग करने नहीं जाता। तो ये चीजें क्या हैं, ये एट द एंड ऑफ द डे, हजार आप बोलो सकलैन मुश्ताक मोहम्मद यूसुफ जिस मर्जी की आप बात करो, एंड पे बात ये सवाल बाबर आजम से होना है क्योंकि वो कैप्टन है, ठीक है। आपको चाहे लाख दर्जे सकलैन मुश्ताक बोलें कि जी नवाज को हमने नीचे भेजना है, अगर तो ये बोलते हैं, आपका अपना दिमाग है आप उसको, क्योंकि क्रेडिट लेने पे बाबर पीछे नहीं हटे थे। जब इंडिया में सवाल हुआ इंडिया वाले मैच में कि जी नवाज को किसने ऊपर भेजा था, टीम मैनेजमेंट नवाज ने टीम मैनेजमेंट का नाम लिया
एकदम आगे थे,
और बाबर ने बोला कि मैंने भेजा,
मुझे याद है
मैंने भेजा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब फील्डिंग की बात आई, कैचेस आपसे छुटे, वसीम का कैच मैं बोलूंगा मुश्किल था क्योंकि बहुत ऊपर कैच था, लेकिन स्टिल कर सकता था वो। प्रेस पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहते, क्या प्रेजेंटेशन होती है, उसमें जब फील्डिंग की बात हुई तो बाबर कहते हैं हमारी फील्डिंग भी अच्छी नहीं रही। भाई आप शदाब की तरह ओनरशिप लो, डायरेक्ट बोलो कि भाई मेरी फील्डिंग नहीं अच्छी रही, मैंने कैच छोड़े, मेरी वजह से टीम हारी, ठीक है। बोलो आप कप्तान हो ना आप ये। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब डायरेक्टली सवाल हुआ तब बाबर ने माना कि हाँ भाई मेरे से कैच छूटे। तो ये कुछ चीजें हैं जो बड़ी माइन्यूट होती हैं, लेकिन लीडरशिप कैपेबिलिटी आपको आइडिया
होगा। मैं आपको एक बार बताऊं?
बिल्कुल बताएं सर।
बिल्कुल, अगर आप देखें, अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस यूं ही रहती है आगे भी ना, तो मेरे ख्याल में बाबर की अपनी परफॉर्मेंस भी इससे हर्ट हो जाएगी, कि जो उसकी टेक्निकल शॉट्स हैं, जिस तरह वो मैच विनिंग प्लेयर है ना, तो वो चीज भी काफी ज्यादा हर्ट हो जाएगी। तो इस पे मैं खैर सोचना चाहिए इनको,
मुझे तो लग रहा है अभी से हर्ट हो रही है,
कौन सही कैप्टन है कौन। हाँ जिस तरह यार वो कर रहा है, हालांकि वो शॉटें तो अच्छी मारता है, प्यारी मारता है, आपको याद होगा पहला चौका जो मारा
उसके बाद। भाई आउट ऑफ फॉर्म तो वो कहीं से नहीं है, दिमागी तौर पे ही हाँ, वो वही मसला है ना, प्रेशर है और तो कुछ भी नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म
प्रेशर है, सिर्फ प्रेशर।
100 मारी है अभी यार। जाते जाते आखिरी कमेंट ले लेते हैं। इशफाक अली कहते हैं मोहम्मद यूसुफ की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, मगर T20 में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, फिर वो खिलाड़ियों को हिटिंग कैसे सिखा सकते हैं। पॉइंट तो है भाई, टेक्निक। अब शायद ये भी देखना पड़ेगा कि दो इसमें चीजें नजरिए देखने की मेरे हिसाब से उमैर साहब, कि आई डोंट थिंक कि इस लेवल पे कोचिंग कोई बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, पहली बात ये, और दूसरी बात ये, फिर आप शायद अगर डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए डिफरेंट शायद आपको बैटिंग कोच या टीम मैनेजमेंट भी शायद चाहिए हो, क्योंकि ये बात तो जेन्युइन है कि सकलैन और मोहम्मद यूसुफ T20 इतने खेले नहीं हुए, तो शायद आपको कोई अटैकिंग माइंडसेट का कोई टीम मैनेजमेंट चाहिए T20s में।
यार मैं भी इस बात से, इस तरह ये सही बात है इस कि ये वाली बात से एग्री करता हूँ, जिस तरह इस पे एग्जाम्पल में आ रही थी मैकुलम की, कि देखिए वो एक एग्रेसिव माइंडसेट के साथ लेके आया इंग्लैंड की टेस्ट टीम को, उसने वो बेसबॉल नैरेटिव एक अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करवा दिया। तो अगर पाकिस्तान का भी कोई एग्रेसिव आए, इवन वो आए जिसका T20 में एक्सपीरियंस है, तो मेरे ख्याल में अच्छी ऑप्शन होगी वो वाली।
बिल्कुल इशफाक साहब, और इसमें आपके कप्तान का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ब्रेंडन मैकुलम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे अगर बेन स्टोक्स ऑन बोर्ड ना होते।
बिल्कुल,
तो क्या आपको लगता है कि बाबर आजम उस अटैकिंग माइंडसेट से ऑन बोर्ड होगा? मुझे तो नहीं लगता। तो विकास साहब कहते हैं सर पाकिस्तान 22 करोड़ पॉपुलेशन है, क्या 11 अच्छे खिलाड़ी नहीं है? बहुत दुख की बात है सर, अच्छे खिलाड़ी तो बहुत हैं, बात वही है कि चीफ सेलेक्टर साहब से पूछें क्या कह सकते हैं हम। अच्छे खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, किसने कहा है शोएब मलिक बाहर हो, किसने कहा इमाद वसीम बाहर हो, किसने कहा है कि बाकी जो प्लेयर परफॉर्मिंग है वो उनको आप चांस ना मिलो। तैयब ताहिर ने फर्स्ट क्लास मैच में 150 मार दी मैं अभी 3 दिन पहले, फर्स्ट क्लास में टेस्ट में भी 150 मार दी उसने।
देखे ना यार, हम लोग उस वक्त से बात करें तैयब ताहिर की, मेरे ख्याल में जलाल वो टाइम दूर नहीं है कि जब हम पाकिस्तान की एक और टीम भी देखेंगे, दोनों टीमें पैरेलल चलेंगी, तो वो फिर अच्छा सिनेरियो हो जाएगा।
अच्छा, रमीज राजा ने बड़ा इंटरेस्टिंग, आपकी इस बात से मुझे याद है, उन्होंने उनका भी जो इंटरव्यू हुआ है उनकी यूट्यूब चैनल पे मेन पाकिस्तान क्रिकेट के, तो उसमें उन्होंने माना है इस चीज को कि भाई 3 से 4 मैंने जो जूनियर लीग है ये इसलिए करवा रहा हूँ कि जो व्यूअर्स की शिकायत है कि भाई हमारे प्लेयर्स में वो फ्लैम्बॉयंस नहीं है, वो अटैकिंग माइंडसेट नहीं है, तो आपको 3-4 साल बाद ऐसे प्लेयर्स नजर आने शुरू हो जाएंगे जो नई तर्ज की क्रिकेट खेलें। तो बेसिकली वो ये बताना इनडायरेक्टली चाह रहे थे कि हमारी करंट टीम नई तर्ज की क्रिकेट नहीं खेलती, ठीक है, और वो यही कह रहे थे कि कहना उन्होंने दबे अल्फाजों में ये कहा है कि इतना ही है बस कैलिबर, तो जिस कैलिबर के प्लेयर्स हैं वो यही टेम्पलेट के साथ खेल सकते हैं, वो उन्होंने बात मानी है इस चीज को, लेकिन जिस डिप्लोमेटिक वे में मान सकते थे। हसन आरिफ साहब क्या कहते हैं, पहले कमेंट पढ़ लें, व्हाट वाज द लैक ऑफ टू बैडमैन इफ्तिखार इन खुश दिल द थर्ड मैनियक शान मसूद आल्सो केम टू द टीम, दिस इज द क्रिकेट टीम और अ मैड हाउस। यार इट्स बड़े गुस्से में हसन भाई, इफ द टीम वेंट टू ऑस्ट्रेलिया टू प्ले द वर्ल्ड कप देन स्वियर अल्लाह दिस टीम विल बी द फर्स्ट टू बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। बड़े गुस्से में हसन भाई,
बस दुआ करें कुछ अच्छे हालात हो जाए। हमारा जो पूल है वो तो काफी टफ है, उसमें साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, अब देखते हैं श्रीलंका भी आती है या नहीं आती, उसका भी सिर तो काफी
श्रीलंका आ जाए, वेस्ट इंडीज आ जाए, दोनों खतरनाक हैं। नहीं हसन आरिफ साहब, फ्रस्ट्रेशन हमारी भी आपसे मिलती जुलती है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई,
बल्कि यहाँ पे अगर आप हमारी पुरानी एपिसोड्स देखें ना, तो हम लोगों ने एक एक बंदे को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है, और इसी तरह का ही हम लोगों के वो रिमार्क्स थे उस पर।
बिल्कुल, बस आखिरी 2 कमेंट्स लेते हैं उमर साहब, फिर निकलते हैं, मेरी भी एक कॉल है। इशफाक साहब कहते हैं, आप दोनों से मिलकर तमन्ना ये रही एक बार फिर मिलेंगे अगर जिंदगी रही, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज
इंशाल्लाह,
अल्लाह हाफिज आपका,
ख्याल रखें अपना।
इशफाक साहब कहते हैं, अच्छा विकास भाई कहते हैं कि इंडिया में सारे पावर हिटर हैं फिर भी 200 प्लस खुद बनाते हैं, सारे पावर हिटर हैं अच्छा, और दूसरी टीम को भी ऑलमोस्ट बना देते हैं।
ये वही बात है ना, बॉलिंग में लैक है, हाँ। बॉलर्स थोड़े लैक कर, हालांकि यार उनके स्पिनर से मैं काफी इंस्पायर हूँ, अक्षर पटेल ने जो कमबैक मारा है, थोड़ा अखीर किस्म की बॉलिंग कराई है उसने, तो स्पिनर्स के हिसाब से थोड़े सही है वो, लेकिन फास्ट बॉलर्स पे थोड़े से स्ट्रगल है।
यार इंडिया की बैटिंग वर्ल्ड क्लास इस वजह से भी है कि वो सिर्फ पावर हिटर्स नहीं है, वो प्रॉपर बैटर्स हैं और प्रॉपर टेक्निक के साथ छक्के मारते हैं, वो स्लॉगिंग छक्के नहीं होते उनके अक्सर, अगर आप देखें मतलब रोहित शर्मा की बैटिंग, केएल राहुल या विराट की, स्पेशली इन तीनों के तो छक्के देखने वाले छक्के होते हैं, मतलब वो स्लॉगिंग वाले छक्के नहीं होते। एनीवेज जी उमर साहब, मैं कहता हूँ लेट्स वाइंड अप,
जलाल साहब
बहुत खुश हुई,
और कल मिलते हैं फिर तकरीबन 9 बजे मिलते हैं
इंशाल्लाह, पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से रात 9 बजे
पाकिस्तानी टाइम के, बिल्कुल। आपके तो उधर अभी क्या टाइम हो रहा होगा,
मेरे अभी सुबह के 11 हो रहे हैं,
ठीक है, तो चले फिर होती है कल मुलाकात, और जो लोग हमें अभी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें, और हमारी वेबसाइट भी है talkbeforewicket.com, और कुछ रह तो नहीं गया।
नहीं जी, बस यही है कि अगर जो चीज़ आपको रूम फॉर इम्प्रूवमेंट जहाँ मिल लगता है कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए वो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके भी शक बताएं या हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रीच आउट करके बताएं। विकास भाई आपका कमेंट फिर आगे लेते हैं, आप कल भी ज्वाइन करिएगा या आगे भी आने वाली स्ट्रीम्स में ज्वाइन करिएगा, तो फिर इंशाल्लाह बात चलती रहेगी।
क्या कह रहे हैं विकास,
टेम्पलेट की कोई बात कर रहे हैं, मैंने कहा मेरी कॉल है दूसरों के साथ, बाकी लड़कों के साथ, तो ज्वाइन करता हूँ,
सही हो गया, ठीक हो गया,
ठीक है जी,
चले फिर बात होती है, ओके, ख्याल रखें अपना,
हाफिज़।